Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, that's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control then, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian. But I love the Lord, and I love to serve Him. And someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer. Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire.
कि आज रात्रि हम अपने सिरों को एक कलीसिया के समान झुकाते हैं, एक बुलाए गए झुंड के समान आज रात्रि यहाँ विश्वास करने वाले लोगों को तेरे वचन की शिक्षा दें, देह में हमें यथा स्थान पर रखें जो हमारा था और जहाँ हम एक साथ मिलकर मसीह की देह के सदस्यों के समान कार्य को सिद्धि से कर सकें। और अब ये हमारी आवश्यकता है कि हम तुरंत परमेश्वर के पास जाएं और हम में से प्रत्येक पिता ये सोचता है कि क्या होता यदि ये हमारी छोटी बालिका होती, हमारे हृदय कैसे हमारे भीतर उत्तेजित और जलते हुए होते और हम कलीसियाओं को बुलाते कि जल्द ही प्रार्थना करें और कुछ पिताओं के हृदय जल और टीस रहे हैं। प्रभु होने पाए कि वो महान पवित्र आत्मा का व्यक्ति इसी समय पिता के हृदय में आए और संदेह की हर छाया और टीस को निकाल दें और वो जान जाए कि तू परमेश्वर है और तेरे दिव्य प्राधिकार को तेरी कलीसिया और तेरे लोगों के द्वारा कार्यवंत किया जाता है तो कोई रोग तेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। और जैसा कि इस सारे सप्ताह में हम पिछले रविवार से प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने इन विधियों पर विचार किया है या प्रार्थनाओं की ये विधियाँ, हमारे पास बहुत सारे हथियार नहीं हैं जैसा कि हम संसार में देखते हैं, परंतु ये छोटी गोफन की मार प्राण घातक है जब ये विश्वास की उंगलियों से थामी जाती है। ओ प्रभु, होने पाए कि हमारी प्रार्थनाएं घर पर वार करें कि वो मृत्यु जो वहाँ उस बालक पर है और वो छिन्न भिन्न हो जाए और अंधकार की वो छाया उस बालक जो या बच्ची छोटी लड़की से दूर चली जाए और होने पाए कि वो महान ज्योति जो कि परमेश्वर की उपस्थिति की है उस पर चमके। होने पाए कि वो बालक अस्पताल से स्वस्थ निकले। परमेश्वर, हम जानते हैं कि नदी के पार हमारे प्रियजन प्रतीक्षा करते हैं और ये शानदार है, परंतु हम अपने छोटों से प्रेम करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी महिमा के लिए उस बालक को जीवन दें। हम एक कलीसिया के समान उस मृत्यु को लताड़ते हैं और कहते हैं तू वहीं खड़ी रहे। तू उस बालक को नहीं ले जा सकती क्योंकि हम उसके जीवन का दावा परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। प्रभु इन बातों को प्रदान करें कि लक्ष्य की ओर सीधे जाएं, जैसा कि हम उन्हें निर्देश देते हैं यीशु मसीह के नाम में हमारा बचाने वाला, आमीन। क्या हम विश्वास करते हैं? मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता था यदि मैं एक मसीही ना होता। मैं अधिक समय तक रुकना नहीं चाहता। जीने के लिए कुछ नहीं है, केवल दूसरों को बचा लिया, यही सबसे अच्छा है जो मैं जानता हूँ। अब आज रात्रि मैं छोटी सी भूमिका अपने पिछले पाठ की आरंभ करना चाहता हूँ और मैं पढ़ने का यत्न करूँगा क्योंकि पूरा अध्याय यदि मैं आज रात्रि कर सका, ताकि रविवार प्रातः हो सकता है मैं इसे प्रातः और सांझ में लेना पड़े। यदि यह ठीक रहा, यत्न करूंगा कि इस बैठक में मैं जो चाहता हूं कि कलीसिया देखे, ओ अपनी स्थिति को पा लेना शानदार है और कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ठीक प्रकार से ना जान जाए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या हो यदि आपका होने वाला एक ऑपरेशन होने वाला हो और वहाँ एक युवक डॉक्टर हो जो हाल ही में विद्यालय से निकला हो कि वो करेगा, पहले कभी ना किया हो, अब भी वो नवयुवक है और सुंदर और उसके बाल सीधे सीधे खड़े हुए हों और बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हों, सुव्यवस्थित और सब कुछ, और वो कहे मैंने चाकू तेज कर लिए हैं और मैंने सारे उपकरण निष्कीटित कर लिए हैं, परंतु आपको उस विषय में एक थोड़ा अजीब सा अनुभव होगा। अच्छा हो कि एक पुराना डॉक्टर लूं जो इस ऑपरेशन को पहले कई बार कर चुका हो, मैं उससे करवाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कोई नया नया विद्यालय से निकला हुआ ना हो, मैं चाहता हूं कि कोई अनुभव के साथ हो, और अच्छे अनुभव वाले एक को मैं जानता हूं आज रात्रि बुलाने के लिए, वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का महान डॉक्टर और महान शिक्षक है। और जैसे कि मेरे संदेश की भूमिका आज रात्रि चल रही है, ये अब भी रविवार के उपदेश से है कि ये है, उन्होंने सैमुएल को प्रभु के वचन के साथ अस्वीकार कर दिया और शाऊल को स्वीकार किया कीश का पुत्र, और सैमुएल को अस्वीकार कर दिया जो कि पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व था, क्योंकि वो वैसे ही बोला जैसे पवित्र आत्मा ने उसकी बोलने की अगुवाई की। जब उसने उनका ध्यान उस पर दिलाया, उसने कहा स्मरण रखो कि मैंने आप लोगों से कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो प्रभु ने ना किया हो, ना ही मैंने तुम्हारे सामने दुर्व्यवहार की चाल चली, और कोई मुझ पर पाप का दोष नहीं लगा सकता, जैसे कि यीशु ने कहा कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है, समझे। और उसने फिर कहा कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आया कि तुमसे पैसे मांगे और आदि आदि, मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं लिया, परंतु सब जो मैंने कहा वो तुम्हारी भलाई के लिए कि मैं तुम्हारे पास जो लाया वो प्रभु के मुख से लाया। और सब लोगों ने गवाही दी, ये सत्य है, वो सब सत्य है, परंतु फिर भी हमें एक राजा चाहिए। हम संसार के लोगों के समान होना चाहते हैं। अब आज रात्रि हमारा पवित्र वचन इफिसियों की पुस्तक को नए नियम की यहोशू की पुस्तक में बांटता है। ये जैवंतों को बांटकर एक क्रम में स्थापित करता है। ये तो कुछ मिनटों की भूमिका थी कि पढ़ना आरंभ करने से पहले एक स्थान पर पहुँचे, तीसरे पद से आरंभ करते हुए। अब हमने पिछले रविवार रात्रि को देखा कि परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर इज़राइल से एक विश्राम के देश की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वे तीर्थ यात्री और घूमने वाले हो गए थे और वे उस भूमि में थे जो उनकी नहीं थी, और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा प्रतिज्ञा की वो परदेशी है, उसका वंश 400 वर्षों के लिए अनजाने लोगों में परदेशी रहेंगे, और दुर्व्यवहार किया जाएगा, परंतु शक्तिशाली हाथों के द्वारा उन्हें भले देश में लाया जाएगा जहां दूध और शहद बहता है। और अब जब प्रतिज्ञा का समय निकट आया तो परमेश्वर ने किसी को उठाया कि उन्हें उस देश में लेकर आए। आज रात्रि कक्षा में से कितने हैं जो एक था जानते हैं कि वो कौन था? मूसा। ध्यान दें, एक हमारी वास्तविक छाया जो हमें दी गई कि हमें प्रतिज्ञा के देश लाए मसीह। अब हमारे पास एक प्रतिज्ञा है क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा आत्मिक विश्राम है, जबकि उनका भौतिक यानी शारीरिक विश्राम था। और इसलिए वे उस देश में आ रहे थे ताकि वे कह सकें, ये हमारा देश है। अब हम घूमने वाले नहीं हैं, हम बस गए हैं। ये हमारा देश है और यहाँ हमें विश्राम मिला है। हम अपना अनाज बोएंगे, अपनी दाख की बारियां लगाएंगे और हम अपनी बारियों में से खाएंगे, और जब हम मर जाते हैं तो हम अपने बालकों के लिए छोड़ जाएंगे। ओ, हम इस देश में कैसे जा सकेंगे वारिसाना की व्यवस्था से, जैसे नियोमी और रूत, बोआज, उस सबको वापस लाएं, कैसे एक भाई इसराइल में, कैसे उसे होना चाहिए, कोई भी चीज जो वो खो चुका था उसे समीप के रिश्तेदार के द्वारा छुड़ा ही जाना चाहिए। ओ, ये कितना सुंदर है, और ये तो सप्ताहों 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 और सप्ताहों को लेगा। हम इस अध्याय को कभी ना छोड़ेंगे कि इसी पर ही रहें। हम समस्त बाइबल को ठीक यहाँ केंद्रित कर सकते हैं, ठीक इसी एक अध्याय में। ओ, मैं इसका अध्ययन करना पसंद करता हूँ। हम इसे लिया करते थे और इसे वर्ष भर के लिए लेते थे और एक छमाई और कभी भी पुस्तक को नहीं छोड़ते थे, बस इसी पर स्थिर रहे। अब परंतु ये एक ऐसी महान बात थी, वो विरासत देश में, वो कैसे एक विरासत थी जिसे कोई और नहीं परंतु एक समीपी रिश्तेदार उस उत्तराधिकार को छुड़ा सकता है। अब मुझे यहाँ पर एक छोटा सा निशान छोड़ने दें जिसे कि मैंने किसी और रात्रि में लिया था आप माताओं के लिए। कितनों ने यहाँ अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना की, खोयों के लिए? ठीक है, आप फिर वहीं पर हैं। देखिए, आपकी विरासत, समझे? पौलुस ने रोमी को बताया, कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना बच जाएगा। यदि आपके पास वहाँ स्वयं अपने बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त विश्वास है, कोई मतलब नहीं कि वो लड़का मार से कितना भी भटका हुआ है या वो लड़की, वे जो भी हों बच जाएंगे। परमेश्वर कैसे भी, यदि उसे उनको लिटाना भी पड़े, अस्पताल में पड़े हुए मर रहे हैं, वे बच जाएंगे। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, वो वारिसाना हक। ओ, और वो वहाँ होंगे, यशाया ने कहा, और उनके सारे बालक उनके साथ, उन्हें ना दुख होगा ना ही मेरे पवित्र पर्वत पर नाश होंगे, यहोवा कहता है। ओ, मेरे पास थोड़ा सा स्थान है, मैं आशा करता हूँ मैं आज रात्रि आपके लिए ले सकता हूँ। मेरे हृदय में जल रहा है उसके लिए कि उस पर वापस आऊं। परंतु अब आगे को, तब क्या आपने मूसा पर ध्यान दिया कि वो महान आश्चर्य कर्म करने वाला जो इसराइल को वहाँ होते हुए लाया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश तक लाया, परंतु उनके उत्तराधिकार में उनको न रखा, उसने उनका उत्तराधिकार उन्हें नहीं दिया, उसने उनका उत्तराधिकार उन्हें नहीं दिया, वो उन्हें उस भूमि तक लाया, परंतु यहोशू ने लोगों को भूमि बांटी। क्या ये ठीक बात है? और मसीह कलीसिया को उस स्थान तक लाया जहां उनका उत्तराधिकार उनको दिया गया था, केवल यर्दन को पार करना था, परंतु पवित्र आत्मा वो था जिसने कलीसिया को क्रम में व्यवस्थित किया। आज का यहोशू कलीसिया को उसके क्रम में व्यवस्थित करता है, प्रत्येक को वरदान स्थानों और पद को देता है और वो परमेश्वर की वाणी है, उस अंदर वाले मनुष्य द्वारा बोल रही है जिसे मसीह ने बचाया है, वो पवित्र आत्मा। अब क्या आपको इतना मिला है? अब हम इफिसियों की पुस्तक में जा रहे हैं। अब उसी प्रकार से वो कलीसिया को उपयुक्त स्थान पर स्थिर कर रहा है जहाँ से वे हैं। अब यहोशू ने उन्हें सांसारिक रूप में रखा, अब पवित्र आत्मा कलीसिया को उपयुक्त स्थान पर रख रहा है भूमि में, ताकि वे उस स्थिति में जिससे वे संबंधित हैं उनका उत्तराधिकार। अब पहली बात जो वो यहाँ पर आरंभ कर रहा है, वो अपनी पत्री को संबोधित करता है पौलुस, जिसको कि अब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि सारे भेद उस पर प्रकट हुए। धर्म विद्यालय में नहीं, न ही किसी धर्म ज्ञानी के द्वारा, परंतु ये पवित्र आत्मा का दिव्य प्रकाशन है जो कि परमेश्वर ने पौलुस को दिया, ये जानते हुए कि परमेश्वर का भेद, उसने कहा, जो कि पृथ्वी के रचने से पहले छिपा हुआ था, उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। और पवित्र आत्मा लोगों के मध्य में प्रत्येक को यथा स्थान में सुव्यवस्थित कर रहा है, कलीसिया को पद पर स्थापित कर रहा है। अब पहली बात जो पौलुस लोगों को यहाँ बता रहा है कि सब स्मरण रखें, ये कलीसिया को है, बाहर वालों के लिए नहीं। उसके लिए ये भेद पहेली में है, कभी भी समझ में आने योग्य नहीं है, सर के ऊपर से निकल जाता है, कुछ नहीं के सिवाय कुछ नहीं जानता। परंतु कलीसिया को ये चट्टान में मधु है, ये ना बोलने वाला आनंद है, ये धन्य आश्वासन है, ये प्राण का लंगर है, ये हमारी आशा और रुकने का स्थान, ये युगों की चट्टान है, ओ ये हर चीज है जो अच्छी है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परंतु कनान से बाहर का व्यक्ति इस विषय में कुछ नहीं जानता, वो अभी भी भटक रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो मनुष्य जो मिस्र में भी है वो भला मनुष्य नहीं है, परंतु वो जब तक वो अपने इस अधिकार में नहीं आ जाता और वो स्वामित्व जो वो प्रतिज्ञा जो कलीसिया को दी गई थी वो स्वाभाविक भूमि नहीं थी परंतु आत्मिक भूमि, क्योंकि हम राजसी याजक पद, एक पवित्र देश, तब इस राजसी याजक पद, पवित्र देश, विशिष्ट लोग, बुलाए हुए, निर्वाचित, चुने हुए, एक और अलग किए हुए, उससे सारा संसार बाहर जो मरा हुआ है और हमारा आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन हुआ है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां परमेश्वर के आत्मा द्वारा अगुवाई में, मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के द्वारा, सब प्रेम में अब सारी चीजें एकत्र हो गई हैं। ये बहुत बार सिखाने का यत्न किया जा चुका है और कोई संदेह नहीं कि कोई महान धर्मज्ञानी बहुत ही गहराई में प्रहार करे, मैं जितना कर सकता हूँ, परंतु वो बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये है कि एक मनुष्य जो मसीह में है पवित्र आत्मा के साथ, उस मनुष्य के संग सहते हुए रह सकता है जबकि वो गलत है। धैर्य, नम्र, सहन करना, वो सुशील, नम्र, स्वामी भक्त, आत्मा से भरा हुआ, कभी भी नकारात्मक नहीं, सदा आशावान, वो भिन्न व्यक्ति है। वो केवल एक ही मनुष्य ही नहीं, हम जो कभी थे, यदि हम चिल्लाए हमें ये मिला, हम मेथोडिस्टों को, ओ जब हम चिल्लाए हम देश में थे, ये अच्छा है, ये ठीक है, मैं इसका भी विश्वास करता हूँ। तब पेंतिकोस्तल अन्य भाषा बोलते हुए आए, उन्हें ये मिला, प्रत्येक जो अन्य भाषा बोला उसके पास था, मैं भी इसका विश्वास करता हूँ। परंतु हम अब भी पाते हैं कि बहुत सो के पास ये अब भी नहीं था, आप समझे। अब हम इस महान छिपे हुए भेद पर आ रहे हैं जो कि संसार के रचने से पहले छिपा हुआ था और अब अंत के दिनों में परमेश्वर के पुत्रों पर प्रकट किया जा रहा है। आप इस बात का सत्य होने का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो गए हैं? इसके पहले हम कहीं भी बढ़ें, आइए रोमियों का 8वां अध्याय निकालें। एक मिनट, मैं आपको कुछ पढ़कर सुना दूं। देखिए, यदि ये आगमन है जहां तक मैं यहां बोल रहा हूं। अब हम रोमियों 8 लेने जा रहे हैं, 19वां पद रोमियों के 8 अध्याय का। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आशा भरी दृष्टि से सारी सृष्टि प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, प्रगटीकरण क्या है? मालूम हो जाना, समस्त संसार, उधर मुसलमान, वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर, हर जगह वे इसे खोज रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं? हमारे पास थे, हमारे पास तेज चलने वाली हवा थी, हमारे पास गर्जनाएं और बिजली, हमारे पास तेल और लहू था, हमारे पास सब प्रकार की चीजें थीं, परंतु हम सुनने में असमर्थ रहे। वो धीमी हल्की आवाज जिसने भविष्यद्वक्ता को आकर्षित किया, जिसने अपने चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ था और बाहर आया, कहा, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। समझे? अब सारी सृष्टि कह रही है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अब पौलुस पहले कलीसिया को ठीक वहाँ स्थापित करने जा रहा है जहाँ से वो है। अब थोड़ी सी भूमिका लेने के लिए हम इसे फिर से पढ़ें। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का संतों के नाम, वे जो पवित्र किए गए हैं, जो इफिसुस में है और मसीह यीशु में विश्वासी हैं, अब इसलिए कक्षा इसे नहीं भूलेगी। हम मसीह में कैसे आ सकते हैं? क्या मसीह में सम्मिलित होने के लिए आराधनालय जाएं? क्या मसीह में सम्मिलित होने के लिए हम कोई कार्य करें? क्या मसीह में सम्मिलित होने के लिए हम पानी में डुबकी लगाएं? हम मसीह में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा, एक बड़ा SPIRIT जो कि पवित्र आत्मा है, हम सब ने एक ही प्रतिज्ञा के देश में बपतिस्मा लिया। इस प्रतिज्ञा के देश में हर चीज हमसे संबंधित है। इस प्रतिज्ञा के देश में, इसे देखिए भाई कॉलिंस, देखिए, हर चीज प्रतिज्ञा के देश में है। जब इसराइल यर्दन के इस पार आ गया, प्रतिज्ञा के देश में हर चीज के लिए लड़े। अब स्मरण रखें, इस प्रतिज्ञा के देश में, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बीमारियों से प्रतिरक्षित हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परेशानियों से प्रतिरक्षित हो गए हैं, परंतु ये इसका वशीकरण है। ओ, ये गहराई में बैठ जाए। ये कहता है कि ये आपका है, केवल उठकर इसे ले लें। समझे? जब, और स्मरण रखें, केवल एक ही विधि थी कि इसराइल किसी मनुष्य को कभी खोए, कि जब पाप शिविर में आ जाए। केवल एक ही विधि है कि हम जय ना पाए, कि पाप शिविर में अंदर आ जाए, कहीं कुछ गड़बड़ है। जब अक्कन ने उस मजदूरी को चुराया और वो बाबुल की चादर पाप शिविर में था और युद्ध गड़बड़ हो गया। आप आज रात्रि ये आराधनालय मुझे दे दें, इस झुंड के लोगों को सिद्धता से परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, सिद्धता से पवित्र आत्मा के साथ, आत्मा में चलते हुए। मैं किसी भी बीमारी को चुनौती देता हूँ, या किसी दुख को, या किसी भी चीज को जो वहाँ है, हर जॉय लुइस जो इस देश में है, उसके सारे विश्वासघात के साथ, और सारे अविश्वासियों का जो वहाँ उसमें है, किसी भी बीमारी या रोग जो इस दरवाजे के भीतर है, और वे यहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, केवल अविश्वास का पाप इसे रख सकता है। अब हम इसमें आ रहे हैं कि ये छोटा पाप क्या है थोड़ी देर के बाद। अब जो मसीह यीशु में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। मसीह में, जब हम मसीह में हैं, तो हमारे पास आत्मिक आशीषें हैं। मसीह के बाहर हमारे पास संवेदनाएं। मसीह में हमारे पास आशा में आशीषें हैं, ना कि बनावटी विश्वास, ना लज्जाएं, ना कि कुछ और मिलाना। परंतु जब तक आप ये कहने का यत्न कर रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा के देश में हैं और आप है नहीं, आपका पाप आपको ढूंढ लेगा। और पहली बात आप जानते हैं, आप स्वयं को झुर्री युक्त पाएंगे और वो सब जो जैसे आप संसार में कहते हैं परेशान हाल। आपको मालूम पड़ेगा आपके पास वो नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। परंतु जब आप मसीह यीशु में हैं, उसने आपसे स्वर्गीय शांति की प्रतिज्ञा की है, स्वर्गीय आशीषों की, स्वर्गीय आत्मा, हर चीज आपकी है। आप प्रतिज्ञा के देश में हैं और सारी चीजें आपके पूरे अधिकार में हैं। आमीन। कितना सुंदर है। ओ, हम इसका अध्ययन करें। उसके चुन लिए जाने के अनुसार अब यही जहां पर कलीसिया बुरी तरह से ठोकर खाती है, सुमिति के अनुसार उसने उसमें हमें चुन लिया। किस में? मसीह में। अब हम पाते हैं वहाँ पीछे उत्पत्ति में और प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 17:8, उसने हमें मसीह में चुन लिया संसार के रचने से पहले। अब वचन मैं अगला पढ़ूं, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमें पहले से ठहराया। अब मैं पहले से ठहराया जाना इस शब्द पर रुकना चाहता हूं। अब पहले से चुन लिया जाना क्या ये नहीं कहता मैं भाई नेविल को चुन लूंगा और मैं भाई बिलर को नहीं चुनूंगा? ये ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर के पूर्व ज्ञान से है, जो कि जानता है कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक नहीं था। इसलिए पूर्व ज्ञान के द्वारा परमेश्वर जानता है कि वो क्या करने जा रहा था। उसने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा ठहराया ताकि सारी बातें मिलकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं भलाई उत्पन्न करें, ताकि वो उस आने वाले युग में सारी चीजों को उस एक में एकत्र करे जो कि मसीह यीशु है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा चित्र खींच कर दिखाऊं, ये अच्छा है। हम वापस जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस पर हमने थोड़ी बातें की हैं उस रात्रि। उत्पत्ति 1:26 में इस पर जोर दिया है, जब परमेश्वर ने अपने नाम को पुकारा, यहोवा परमेश्वर, ये एल शब्द में है, एला एलोहिम, जिसका अर्थ स्वयं से ही अस्तित्व में, सिवाय उसके वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई हवा नहीं थी, कोई ज्योति ना थी, कोई सितारे, कोई संसार नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था। ये परमेश्वर था और अकेला परमेश्वर, एल एला एलोहिम। अब ये उसने बनाया। उसके अंदर गुण थे, जिसका अर्थ ये था वो एक था। इस महान एल एला एलोहिम में एक गुण था, या एक, आप जानते हैं गुण क्या होता है, या मैं इसे इस प्रकार कहूँ, एक स्वभाव था। ये ऐसा कि छोटा बालक भी समझ जाए, और मैं उन छोटों में से एक हूँ। जिसे इसी प्रकार समझना है। उसके भीतर पिता होने का स्वभाव था, परंतु वो स्वयंभू है। उसके लिए कुछ नहीं था कि जिसके द्वारा वो पिता बने। और अब वहाँ उसके अंदर उसमें कुछ था कि वो एक परमेश्वर था और एक ईश्वर आराधना का उद्देश्य है, परंतु वो स्वयंभू था। एलोहिम। इसलिए उसकी आराधना करने के लिए कुछ नहीं था। उसके भीतर वो एक बचाने वाला था और वहाँ कुछ नहीं खोया था कि बचाया जाए, समझे? उसके भीतर वो एक चंगा करने वाला था। देखा, परंतु चंगा करने के लिए कोई रोगी नहीं था या बीमार होने के लिए कोई नहीं था। अब आपको ये चित्र समझ में आया? इसलिए उसके गुण, उसके स्वभाव ने वो उत्पन्न किया जो आज है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा तो परमेश्वर ने इसे आरंभ में ही क्यों नहीं रोक दिया? वो एक निर्दयी हृदय वाला है, कहा जॉयल्यूस ने, वो है जिसने जॉय या जैक को दोषी ठहराया। देखा, कहा वो केवल एक निर्दय हृदय वाला पाश्विक है, परमेश्वर जैसी कोई बात नहीं। यदि ऐसी कोई चीज होती तो वो ऐसा होता। ओह, मैंने वैसे ही उसके सब प्रकार के नाम लिए, परंतु ये केवल इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, परंतु यहाँ अंदर में उसमें कुछ नहीं है। अब ये यही जहाँ ये बात है, समझे? ये वचन यहाँ ये बताता है और उसने ये छिपाया, और ये भेद अब यहाँ छिपे हुए थे। स्मरण रखें, बाइबल ने कहा संसार के रचने से पहले परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है ताकि उन्हें कलीसिया में प्रदर्शित करे। ओ प्रभु, आप इसे समझ गए? अब मैं अपनी कथा पर रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए, या मैं लाऊंगा, मैं इसे लाने के लिए अपने अगले विचार पर आऊंगा। अब स्मरण रखें, मूसा के सारे युगों में होते हुए, पीछे भविष्यवक्ताओं के युगों में, पीछे युगों में आपने इन अंतिम दिनों तक प्रतीक्षा की है इन बातों के लिए ताकि प्रदर्शित की जाएं वचन के अनुसार। ये ठीक बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्रों पर प्रकट होनी थी। क्यों? बर्बादी से जब तक नहीं होता, जैसे कि पिरामिड, जैसे कि मैंने कहा, समीप और समीप समीप बनता जा रहा है। जैसे कि मैंने अक्सर ये टिप्पणी की है और कहा है, परमेश्वर ने तीन बाइबलें बनाई। पहले वाली उसने आकाश में रखी है, राशि चक्र में। क्या आपने कभी राशि चक्र देखे हैं? राशि चक्र में पहला चित्र क्या है? कन्या। राशि चक्र में अंतिम चित्र क्या है? लियो, सिंह। पहली बार कन्या के पास आया, वो दूसरी बार सिंह के समान आया, यहूदा के गोत्र से, समझे? उसने अगली वाली पिरामिड में बनाई हनोक के दिनों में, जब उन्होंने पिरामिड बनाए और उन्होंने उन्हें नापा। मैं इसे नहीं समझता, परंतु युद्धों के लिए जहां वे झुके और अपने घुटनों पर इतने चले और युद्धों की उस दूरी को नाप सकते थे। आप जानते हैं वे अब कहां से नापते हैं? राजा के कष्ट के आर पार साहुल लगाते हैं। और जैसा कि ये पिरामिड ऊपर गया और हम इसे नहीं बना सके, हर उस चीज के साथ जो आज हमारे पास है, हम इसे नहीं बना सके। ये ठीक इस प्रकार से बना है एक बिंदु तक, और पत्थर ऊपर चोटी का पत्थर कभी नहीं मिला था। उन्होंने पिरामिड के ऊपर कभी भी ढक्कन नहीं लगाया। मैं नहीं जानता कि आप जानते हैं या कि नहीं, मिस्र का बड़ा पिरामिड, उसके चोटी पर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं था। क्यों? चोटी का अस्वीकृत किया गया, मसीह, चोटी का पत्थर, देखिए, अस्वीकृत किया गया था। परंतु जैसे हम लूथरन युग, बैप्टिस्ट युग, मेथोडिस्ट युग, पेंटिकॉस्टल युग में बढ़ते हैं, अब हम चोटी के पत्थर पर आते हैं। उस चोटी के पत्थर के बैठ जाने की प्रतीक्षा और राह देख रहे हैं, भवन का पूरा होना। क्या आपने वचन में नहीं पढ़ा कि वो चोटी का पत्थर अस्वीकृत किया गया था? सही में हम अनुभव करते हैं कि वो सुलेमान के मंदिर के विषय में बातें कर रहे हैं, परंतु अस्वीकार किया गया पत्थर सिरे का मुख्य पत्थर हो गया। और मैं ये केवल इसलिए कह रहा हूँ, ये केवल आपके लिए एक चित्र बनाना। अब और बाइबल में हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, पिरामिड की चोटी पर, राशि चक्र में, कैंसर युग की आपस की कटी हुई मछलियां, सिंह के आने के समय में वो सिंह, चोटी के पत्थर लगने में और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के समय में। देखिए बाइबल में, देखिए हम कहां पर हैं, हम ठीक अंत समय में हैं। कितने इस सप्ताह अखबार पढ़ रहे हैं क्रुश्चेव और उन्होंने क्या कहा? ओ वे तैयार हैं, ऐसे ही हम भी। आमीन। तैयार, ये ठीक है। देखिए, ओ क्या ही सौभाग्य है, क्या ही दिन है यदि मसीही इस दिन का अनुभव कर सके जिनमें हम रह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पुस्तक का लेखक, जिसने इसे देखा और देखा कि ये अंत के दिनों में कहा प्रकट हुआ, परमेश्वर के पुत्रों के लिए प्रतीक्षा और कह रही है कि अंत के दिनों में उठें, अंत के युग में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ पृथ्वी के रचने से पहले जो बातें छुपी हुई थी उन्हें प्रकट करने के लिए, ले आने के लिए। अब आइए वापस उसमें चलें, पृथ्वी के रचने से पहले फिर से प्रकाशन को पाने के लिए, ये देखने के लिए यदि हम ठीक हैं या नहीं। मैं आशा करता हूँ मैं परमेश्वर को पापा कहने से स्वयं को धर्मद्रोही नहीं बना रहा हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इसे समझ जाएंगे। पापा यानी पिताजी, पापा ने कुछ बालकों को चाहा, इसलिए उसने क्या किया? उसने कहा स्वर्गदूत हो जाएं, और वे उसके चारों ओर आ गए। ओ ये अच्छा है, उन्होंने उसकी आराधना की। तब वो परमेश्वर था, वो गुण स्मरण रखिए, वो एल ईएल एला एलोहिम स्वयं भू, कुछ नहीं केवल वही था। पहली चीज जो आसपास आई वे स्वर्गदूत थे। तब स्वर्गदूत आराधना को छोड़ और कुछ नहीं कर सकते थे, वे नष्ट नहीं हो सकते थे, इसलिए वे बीमार नहीं हो सकते थे, वे अमरणहार जीव थे, इसलिए वो चंगाई की सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं कर सका, वो अपने छुटकारे की सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं कर सका। इसलिए तब पहले, अब देखें, तब इसके पश्चात उसने कहा हम कुछ साकार बनाएंगे, इसलिए उसने पृथ्वी को बनाया, और जब उसने पृथ्वी को बनाया उसने पृथ्वी के सारे प्राणी बनाए, और तब उसने मनुष्य को बनाया। हर चीज जो पृथ्वी में से निकल कर आई वो टेडपोल या एक जेली मछली से आरंभ हुए, मछली का एक रूप जल पर तैर रहा था, वहाँ से आरंभ हुआ, उससे एक मेंढक से जो जीवन का सबसे छोटा प्रकार है जिसे हम पा सकते हैं, जिसका वे दावा करते हैं मेंढक है, सबसे ऊपर मनुष्य जाति है, और ये मेंढक से आरंभ हुआ छिपकली को, और छिपकली से आगे और आगे और आगे, और हर बार पवित्र आत्मा वुश करना और आरंभ करता है, जीवन फूंकता है, फिर आता बड़ा जीवन। और पहली बार कोई चीज परमेश्वर के प्रतिरूप में आई वो मनुष्य था, कुछ भी कभी नहीं था, कभी नहीं था, कभी कोई और सृष्टि नहीं की जाएगी जो मनुष्य से बढ़कर हो, क्योंकि एक मनुष्य परमेश्वर की समानता में है, समझे? मनुष्य से जब उसने अपना पहला मनुष्य बनाया, अब जब उसने अपने स्वर्गदूत बनाए उसने मनुष्य को बनाया, उसने उनकी सृष्टि नर और नारी करके की, सब एक ही इकाई में, वो पुरुष और स्त्री दोनों था, नारीतत्व और पुरुषत्व। जब उसने आदम बनाया और उसे देह में डाला, स्मरण रखिए उत्पत्ति एक में उसने पुरुष और स्त्री को बनाया, और उत्पत्ति दो में भूमि जोतने के लिए पृथ्वी पर कोई मनुष्य न था, शारीरिक मनुष्य, कोई मनुष्य नहीं जो कुछ भी पकड़ सकता था और भूमि जोतता, परंतु तो भी वहाँ परमेश्वर की समानता में मनुष्य था, और परमेश्वर एक, ये ठीक है, समझे? उसने पहला मनुष्य बनाया, उसने उनकी नर और नारी करके सृष्टि की। अब जब उसने पहला मनुष्य बनाया, अब स्मरण रखें, कुल मिलाकर वो उसके मस्तिष्क में था, और रविवार रात्रि मैंने से लिया था, एक वचन विचार का प्रगटीकरण है। परमेश्वर ने सोचा वो कैसे परमेश्वर हो सका, उसकी कैसे आराधना हो सकी, वो कैसे चंगा करने वाला हो सका, वो कैसे एक बचाने वाला हो सका, और जैसे ही उसने वचन बोला वो सदा के लिए पूरा हो गया था। ओ यदि अब ये परमेश्वर के पुत्र केवल अब उस वचन को थाम सकते हैं इस प्रकार से, जब परमेश्वर वचन बोलता है ये पूर्णतः पूरा हो गया, वो प्रतीक्षा कर सकता है। वंशावली ये कहती है, ओ एक पुरातत्वज्ञ, और वे सब दावा करते हैं संभव है कि संसार करोड़ों करोड़ों और करोड़ों, मैं नहीं जानता ये खरबों खरबों वर्षों में, नहीं जानता कितने समय पहले ये था। परमेश्वर समय में विद्यमान नहीं है, उसके पास एक मिनट भी समय कम नहीं है उससे जब उसने ये बोला। वो अब भी परमेश्वर है, उसके साथ कोई समय नहीं है। मैंने उस रात्रि से पहले इसे ऐसे कभी नहीं जाना था, बल्कि उस प्रातः से पहले। अनंत, कोई बीता कल नहीं, ना आने वाला कल, सारा का सारा अब है। क्या आपने कभी मैं हूँ पर ध्यान दिया है? मैं था नहीं या मैं होऊंगा, ये अनंत है, मैं हूँ, देखा, सदा मैं हूँ अब। परंतु उसने चीजों को अपने समय में रखना चाहा, उसे आराधना करने के लिए कुछ बनाना था, इसलिए उसके गुणों ने ये उत्पन्न किया। तब उसने मनुष्य को बनाया, तब उसने इस मनुष्य में अकेलापन देखा, इसलिए अब उसके बड़े मस्तिष्क को दर्शन पाने के लिए उसके पास जो मसीह और कलीसिया के चित्र में था, उसने मिट्टी के अलग अलग लौंदे नहीं लिए और एक स्त्री को बनाया, परंतु उसने आदम के एक ओर से एक पसली ली और आदम की आत्मा से नारीत्व को लिया और इसे इस पसली में डाल दिया। जब आप एक मनुष्य को खोजे के समान व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो वहाँ कुछ गड़बड़ है। जब आप एक स्त्री को देखते हैं कि वो पुरुषों के समान व्यवहार करना चाहती है, तो उसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ है। ये पूरी रीति से दो भिन्न आत्माएं हैं, परंतु एक साथ मिलकर वे एक इकाई हैं। ये दोनों एक हैं। उसने स्त्री और पुरुष को बनाया और उन्हें कभी भी बूढ़ा नहीं होना था, कभी भी मरना नहीं था, कभी भी सफेद नहीं होना था, कभी भी। वे खाते, वे पीते, वे सोते जैसा कि हम करते हैं, परंतु उन्होंने कभी नहीं जाना कि पाप क्या था। अब मैं यहाँ से हटकर निकलूंगा कभी उस दूसरे अध्याय के लिए, सर्पवंश पर, जो कि उन्होंने मुझे स्मरण कराया, परंतु मुझे देखने दें कि कोई आए और मुझे कुछ भिन्न दिखाए, यही जो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अब परंतु इसके पश्चात भी, तब जब पाप अंदर बैठ गया, क्या घटित हुआ? वहाँ दूर ऊपर, वहाँ लाखों करोड़ों मील दूर, वहाँ एक बड़ा स्थान है और वो सिद्ध एगापाओ प्रेम है। हर बार जब आप कदम को इस ओर उठाते हैं, ये एक इंच घटता है, और आप जानते हैं ये कितना छोटा समय होगा कि वो पृथ्वी पर आ गया। ये छाया की छाया है, छाया की, यही आपके पास है, यही जो मेरे पास है, अगापाओ प्रेम की छाया की छाया की छाया। आप में कुछ है, हर स्त्री में जो 20 को पार कर चुकी है कुछ है, हर पुरुष में जो 20 पार कर चुका है कुछ है, वे वैसा ही रहना चाहते हैं। आपके पास केवल 5 वर्ष हैं, वो 15 से 20, 20 के बाद आप मरना आरंभ हो जाते हैं, परंतु 15 से आप किशोरावस्था में होते हैं, तब तक बालक, और तब आप अपने 20 तक परिपक्व होते हैं, और 20 के बाद वो आप कहते हैं मैं एक अच्छे मनुष्य के समान हूँ। आप ये कहते हैं, परंतु आप नहीं हैं, आप मर रहे हैं और जल रहे हैं। कोई मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं, परमेश्वर ने आपको उस अवस्था तक बनाया, परंतु उसके बाद आप मरने जा रहे हैं। अब क्या होता है? अब आप मरना आरंभ होते हैं, परंतु वहाँ आप में कुछ है जो कहता है मैं फिर 18 का होना चाहता हूँ। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या होता है यदि आप 500 वर्ष पहले जन्मे होते और आज भी 18 वर्ष के बने रहते? यदि आप अपने विचारों के साथ पुरानी मूल्यवान वस्तु नहीं होते, 500 वर्ष पहले वाली, इसके पहले तीर्थ पूर्वज कभी यहाँ पर आए होते और आप इस प्रकार के विचारों वाली एक युवा महिला होती, क्यों? आप संपन्न होते, थोड़ा आगे बढ़ गए होते और बूढ़े हो गए होते और 500 वर्ष तक जिए होते। देखिए, कुछ गड़बड़ है। आप कहते हैं अच्छा अब मुझे अच्छा लग रहा है भाई ब्रणम, ओ मैं 18 की हूँ, मैं 16 की हूँ, मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। प्रिय मैं आपको कुछ बता दूँ, आप कैसे जानते हैं कि आपकी माँ इस मिनट जीवित है यदि वो यहाँ इस आराधनालय में नहीं है? आप कैसे जानते हैं कि आपका पुरुष मित्र अभी कुछ मिनटों पहले मरा हुआ नहीं था या आपकी महिला मित्र? आप कैसे जानते हैं कि प्रातः आप अपने घर में मृत नहीं होंगे? आप कैसे जानते हैं कि आज रात्रि आप आराधनालय से जीवित जा रहे हैं? ये ऐसी अनिश्चितता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। यदि आप 15, 12, 19, 75 या 90 हैं, वहाँ हर चीज वहाँ अनिश्चित है। आप नहीं जानते कि आप कहाँ पर स्थिर हैं, परंतु फिर भी आप पीछे 15, 18 पर जाने की लालसा रखते हैं। आपसे ये कौन करवा रहा है? अब यदि आप वापस होकर 18 ही के बने रहें और कभी बीमार ना हो और कभी, आपको अपने साथ और दूसरों लोगों को ही लेना होगा क्योंकि आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। देखा, लोग दूसरी आयु में चले जाएंगे और आप एक प्राचीन पुरातन होंगे। आप यदि उनके साथ बूढ़े होंगे तो आप उनसे अधिक बुरे होंगे, परंतु वहाँ कुछ है जो आपको वहाँ होने के लिए बुलाती है। ये वो छोटा अगापाव है, वो छोटी छाया जो आपको बनाती है कुछ यहाँ ऊपर। अब उस रात्रि या उस प्रातः 7 बजे जब पवित्र आत्मा अपनी भलाई और अनुग्रह के द्वारा मुझे इस शरीर में से निकाल लिया, मैं विश्वास करता हूँ, हाँ या नहीं, मैं नहीं कहता, और उस देश में प्रवेश कर गया और उन लोगों को देखा और वे सब युवा थे, और मैंने सुंदरतम लोगों को जो पहले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा देखे, और उसने मुझसे कहा उनमें से कुछ 90 वर्ष के थे, वे तुम्हारे मत परिवर्तित लोग हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वे चिल्ला रहे हैं मेरे भाई मेरे भाई। अब वो स्वर्गीय देह है कि जब हम मर जाते हैं तो हम मिथक नहीं बन जाते, हम देह हो जाते हैं। यदि हम प्रत्येक मर जाए, यदि एटम बम हमें इसी मिनट उड़ा दे, अब से 5 मिनट बाद हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे, एक दूसरे के गले लग रहे होंगे, और चिल्लाना और चीखना और परमेश्वर की महिमा करना। जी हाँ श्रीमान, और भाई और बहन स्पेंसर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ यहाँ सबसे बूढ़े दंपति 18-20 वर्ष के होंगे। भाई नेविल एक नवयुवक लड़के होंगे और मैं एक युवा बालक होऊंगा, और हम सब भी हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक सत्य है। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा तो हमारे पास एक और प्रतीक्षा में है। जब व्यवहारिक जन्म में एक छोटा बालक में से जन्म लेता है, ये छोटा शरीर है जो फड़कता और पैर कूदते और आदि आदि, आप नवयुवतियों इस अभिव्यक्ति के लिए क्षमा करें, परंतु जब ये होता है ये जीवित मांसपेशियां एक फड़कना है, परंतु जब ये पृथ्वी पर आता है तो पहली बात ये अपनी श्वास को पकड़ता है, और तब वहाँ प्रकृति आत्मिक देह उस बालक में आती है। इसे छोड़ दें, वो अपना सिर माँ की छाती की ओर बढ़ाता है और दूध पीने लगता है। यदि उसने ये नहीं किया तो दूध भी नहीं उतरेगा। क्या आपने कभी बछड़े पर ध्यान दिया है, जब वो जन्म लेता है और जैसे ही वो बल पाता है कि अपने पैरों के बल खड़ा हो, ये कौन बताता है? अपनी माँ के चारों ओर घूमता है और चारों ओर से बढ़ना आरंभ करके और दूध पीने लगता है। ओ हाँ, क्योंकि जब ये पृथ्वी की देह यहाँ लाई जाती है तो एक आत्मिक देह पहले ही वहाँ इसके लिए तैयार होती है, और जैसे ही ये ओ हालेलुया, और यदि पृथ्वी का हमारा ये घर गिराया जाएगा तो एक वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसे ही हम इसमें से बाहर कदम निकालते हैं तो हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वो जो पीने को ठंडा पानी नहीं मांगता, पानी पीने की उसे आवश्यकता नहीं है। वो जो नहीं खाते, वे इस भूमि की मिट्टी से नहीं बने हैं, परंतु वे ऐसे ही वास्तविक और स्पर्श और हाथों को मिलाया जा सकता है, और केवल प्रेम और हर चीज सिद्ध है, और वो देह वहाँ प्रतीक्षा कर रही है, ये उसका भाग है। वहाँ वे तीन हैं। आप अपना अनंत जीवन यही वेदी पर आरंभ करते हैं, यही जहाँ आप अनंतता को आरंभ करते हैं। ओ आप अनंत जीवन यही आरंभ करते हैं तब आप नया जन्म प्राप्त किए हुए होते हैं परमेश्वर के एक पुत्र और तब जब आप मरते हैं आप आरंभ करते हैं जब आपकी मृत्यु आप पर इस देह में वार करती है और हृदय धड़कना बंद कर देता है और मरणहार चक्र रुकना आरंभ हो जाता है और वो छोटी छाया जो छाया की छाया है एक सेकंड में वो छाया की छाया हो जाती है तब अगले में वो छाया हो जाती है तब अगली वो छोटी धार तब वो नाली बन जाती है तब वो आगे वो नदी हो जाती है और आगे वो सागर बन जाती है और कुछ समय पश्चात आप अपने प्रिय जनों की उपस्थिति में खड़े हुए होते हैं वहाँ खड़े हुए स्वर्गीय देह के वस्त्र में आप एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं आप नव युवक में बदल जाते हैं और नव युवती में फिर से बिल्कुल ठीक बात है यहाँ वहाँ पर जब तक प्रभु यीशु नहीं आता प्रतीक्षा करता है और किसी दिन उसकी वो महिमा वाली देह आप स्मरण रखें ये स्वर्गीय देह है महिमा युक्त नहीं एक स्वर्गीय देह और किसी दिन ये स्वर्गीय देह यीशु के साथ स्वर्ग छोड़ेगी क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ दूसरा थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय या पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय एक या दूसरा मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको अज्ञानता में नहीं छोड़ूंगा भाइयों उनके विषय में जो सोते हैं ताकि तुम शोक ना करो जैसे कि दूसरे जिनके पास कोई आशा नहीं क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि मसीह मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा इसलिए वे भी जो मसीह में सोए हैं परमेश्वर उन्हें उसके साथ ले आएगा क्योंकि हम तुमसे ये कहते हैं ये प्रभु की आज्ञा के अनुसार है ताकि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे आगे न बढ़ेंगे या रुकावट होंगे सबसे अच्छा शब्द जो सोए हैं उनसे पीछे रहेंगे क्योंकि प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे ये स्वर्गीय देह नीचे आती और पृथ्वी की देह को पहनती हैं महिमा युक्त देह और हम जो जीवित हैं और बचे हैं एक क्षण में बदल जाएंगे पलक झपकते ही और उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और मैं दाख का ये रस न पीऊंगा न ही और खाऊंगा जब तक कि तुम्हारे संग अपने पिता के राज में नया न पीऊं विवाह का भोज 3.5 वर्षों के लिए मसीह विरोधी का राज्य समाप्त होता है समस्त संसार नष्ट हो गया यहूदी लोग बुलाए गए यूसुफ स्वयं को अन्य जाति पर यानी यहूदियों पर प्रकट करता है स्मरण रखिए जब यूसुफ स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट करता है तब वहाँ एक भी अन्य जाति उपस्थित नहीं था जब वो भेजता आपको कहानी मालूम है यूसुफ हर प्रकार से मसीह का सिद्ध रूप है और जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बुला भेजा और उसने देखा और छोटे बिन्यामीन को देखा और उसने वहाँ उन्हें देखा और तब वो उन्होंने कहा क्यों ये व्यक्ति हमें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए था यूसुफ को वे यहूदी ये देखते हुए कि उन्होंने गलती की है अब जब मसीह जब वो स्वयं को उन पर प्रकट कर रहा था और यूसुफ इतना भर गया था कि उसे लगभग रोना पड़ा इसलिए उसने अपनी पत्नी और अपने बालकों और सारे अंगरक्षक और सबको वहाँ से भेज दिया और उन्हें राजमहल में भेज दिया ये बिल्कुल ठीक बात है और तब केवल यहूदियों की उपस्थिति में उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ और तब वे गिर पड़े और कांपने लगे कहा अब हम जान गए हैं कि ये हमें मिलेगा क्योंकि ये कि हमने अपने भाई को मार डाला था हमने कहा है हमने अपने भाई को घात किया है और अब ये एक महान राजा है उसने कहा परमेश्वर ने ये जीवन बचाने के उद्देश्य से किया है ठीक यही कारण है कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को बचाने के लिए किया है परंतु अन्य जाति महल में थे हालेलुया यूसुफ अपने भाइयों से अस्वीकार होने के नाते उसने एक दुल्हन ली और दुल्हन अन्य जाति थी यहूदी नहीं ठीक है अब आप कहाँ पहुँच रहे हैं जब हम इस महिमा में देह में लाए जाते हैं और वो महान युग जो आने को है जब ये महिमा वाली देह ये स्वर्गीय देह महिमा वाली देह बना दी जाएगी आप समझे मेरा क्या अर्थ है? तो मैं जा सकता हूँ और कहता हूँ भाई नेविल, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं। मैं कहता हूँ भाई ह्यूम्स, आओ आज प्रातः हम पिता के पास चलें। वो परमेश्वर है, अब हम उसे जानते हैं, वो बचाने वाला है, वो चंगा करने वाला है। वहाँ कभी भी पाप की उत्पत्ति जैसी चीज नहीं होगी। वो भला नीचे नहीं गया क्या? ये पाप सृष्टि नहीं है, नहीं श्रीमान, पाप एक विकृति है। केवल एक ही सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है। पाप धार्मिकता की विकृति है। व्यभिचार क्या है? धार्मिकता की विकृति। झूठ क्या है? सत्य का गलत प्रतिनिधित्व, निश्चय ही। श्राप शब्द क्या है? ये परमेश्वर की आशीषें श्रापित शब्दों में बदल गईं, परमेश्वर को बजाय आशीषों के। पाप सृष्टि नहीं है, पाप एक विकृत रूप है। इसलिए शैतान पाप की सृष्टि नहीं कर सकता, वो केवल उसे विकृत करता है जिसे परमेश्वर ने सृजा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मृत्यु केवल जीवन का विकृत रूप है। अब इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें, तब मैं छोड़ दूंगा और मैं कहूंगा भाई ह्यूम्स, आप और मैं, भाई बीलर और कुछ भाई लोग, हम पिता परमेश्वर के पास जाएंगे। और मान लीजिए हम थोड़ी सी यात्रा करते हैं। आप लड़के पहाड़ों को पसंद करते हैं? जब आप हाँ, निश्चय ही हमने किया। ओ वहाँ दूर लाखों मीलों पर एक नया संसार है। वहाँ आगे बाहर बढ़ो, उसके ऊपर स्थान है। मुझे सूर्य को प्रतिदिन ऊपर ऊंचे पर आ जाओ, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब वे बोल ही रहे होंगे मैं सुनूंगा। यशाया 66, ये ठीक बात है। और आप जानते हैं मैं वहाँ होते हुए चल रहा हूँ। हम सब वहाँ से होते हुए लगभग 500 वर्ष में जाते हैं, बस एक छोटी सी यात्रा, कोई अंतर नहीं पड़ता। और अब ये पागलपन सा प्रतीत होता है, परंतु ये सत्य है। देखिए, ये सत्य है, क्योंकि वहाँ कोई समय नहीं है, ये अनंतता है। और जब मैं वहाँ बाहर जाता हूँ, मैं उसमें से होकर चलता हूँ, और आप जानते हैं कि कौन वहाँ मुझे मिलता है। मैं कहता हूँ, अच्छा, यदि वो बहन जॉर्जिया ब्रूस नहीं है? क्यों बहन जॉर्जिया, आपको देखे हुए बहुत समय हो गया। जैसी वो सदा से है वैसी ही दिखाई पड़ती है, समझे? हो सकता है वो 10 लाख वर्ष की आयु की हो, परंतु वो वैसे ही युवा जैसी वो कभी थी। वो किसी की पीठ खुजा रही है, और मैं वहाँ देखता हूँ ये चीता, सिंह है। मैं कहता हूँ, चीता आज प्रातः तुम कैसे हो? म्याऊं, बिल्ली के समान। ओ मैं वहाँ नीचे बहनों से बातें कर रहा था, उनके चारों ओर बड़े बड़े फूल थे। हम वहाँ 500 वर्षों से थे, देखिए उन्हें देख रहे हैं। अब ये पागलपन लगता है, परंतु ये सत्य है। ये बिल्कुल ठीक, परमेश्वर ने इसी प्रकार विचार किया है। अच्छा बहन जॉर्जिया, आपके हृदय को आशीष मिले। कोई हानि नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं। सांझ के समय में हम पहाड़ की चोटी के ऊपर जाएंगे और कहेंगे, ओ पापा परमेश्वर, एक समय में खोया हुआ था, ओ एक समय में पाप की गंदगी में था पापा परमेश्वर, और आपने मुझे बचा लिया। क्यों? लोग जो ऐसे व्यक्त करने का यत्न करते हैं, ये पागल हो गए हैं। अच्छा वो व्यक्ति जिसने उसका अंतिम पद लिखा है, ओ परमेश्वर का प्रेम, जो पागलखाने की दीवार पर लिखा हुआ था, जिसने परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करने का यत्न किया था, कैसे वो पापियों को बचाने के लिए नीचे झुक गया, और कैसे जो उसने किया उसका प्रेम जो नीचे उतर कर आया कि आपको और मुझे बचा ले। मैं आराधना के विषय में बात करता हूँ, स्वर्गदूत इस विषय में कुछ नहीं जानते। आराधना, स्वर्गदूत केवल इतना ही जानते हैं, वो वहाँ खड़ा होकर अपने पंखों को आगे पीछे करता है और आर पार हेलुलुया हेलुलुया। परंतु वो अनुग्रह, जब ये मालूम पड़ता है मैं खोया हुआ था और अब मैं मिल गया हूँ, मैं मरा हुआ था, मैं फिर से जी गया हूँ। ओ परमेश्वर, मैं पाप था, मैं गंदा था, और मैं वहाँ एक कूड़े के ढेर पर था। यहाँ वो सबसे अच्छा जो जीवन आपको दे सकता था। क्या आप कभी वहाँ कॉलगेट के कूड़ा स्थान में गए हैं? बहुत बदबू वाला स्थान जहाँ मैं कभी गया हूँ। वो धुआं, उसकी बदबू मुझे बीमार कर देती है। वहाँ उस पुराने धुएं में पड़े हुए हैं, अपने पेट से बीमार, बस उल्टियाँ कर रहे हैं जुलाब लेने के पश्चात, जितने बीमार की आप हो सकते हैं। चूहे आपके ऊपर दौड़ रहे हैं, आपको खाने का यत्न कर रहे हैं, और वहाँ जीवन का सबसे उत्तम है। और तब कोई नीचे उतर आया और आपको उठाया, और वास्तव में बूढ़े और अपनी सहायता नहीं कर सकते, और बस आपको उठाकर और 18 वर्षीय लड़के में बदल दिया, आपको पहाड़ की चोटी पर बैठा दिया, स्वस्थ की पूरी बहार में। ताजी हवा में इस प्रकार अच्छी सांस, अच्छा ठंडा पानी। क्या आप उस कूड़े के ढेर पर फिर से वापस जाना चाहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर उस ढेर पर वापस ना जाऊंगा। अब यही है जो इसका अर्थ है मित्रों, यही वो दर्शन या रूपांतरण जो भी है, दर्शन, मैं दर्शन कहूंगा क्योंकि मैं डरता हूं रूपांतरण कहने से किसी को आघात पहुंचेगा, यही वो था। अब वही जहां परमेश्वर, यही जो परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियों को लाने के लिए किया, अब ये लोग कौन हैं? कैसे उन्होंने किया? इन लोगों ने इस योग्यता के लिए क्या किया? कैसे उन्होंने ये कभी किया? परमेश्वर ने आरंभ में इसके पहले की कोई स्वर्गदूत बनाया गया, कितने जानते हैं कि वो अनंत है?
The tree of right and wrong set before every one of us. You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God in his infinite mind saw that and saw the only way.
अब त्रियकता वाले भाइयों, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु कैसे परमेश्वर के नाम के अच्छे वचन से आप कभी भी यीशु को स्वयं परमेश्वर से एक अलग व्यक्ति कर सकते हैं? यदि यीशु किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर और भेजता और इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मरता, तो वो अन्यायी जीव होता। केवल एक ही मार्ग था कि परमेश्वर इसे कर सकता था, स्वयं उस स्थान को ले और परमेश्वर देह बन गया ताकि वो मृत्यु की पीड़ा को चखे और मृत्यु के डंक को ले और मृत्यु को हमसे दूर हटा ले ताकि हम स्वयं उसके द्वारा छुड़ाए जाएं। इसलिए उसकी ऐसी आराधना की जाएगी। यीशु निश्चय ही एक मनुष्य था, वो एक मनुष्य था, आमीन, कुंवारी मरियम से जन्मा, परंतु जो आत्मा उसके अंदर था वो परमेश्वर था, परिपूर्णता में, उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। वो यहोवा येरे था, वो यहोवा राफा था, वो यहोवा मनुष्य था, वो यहोवा था हमारी ढाल, हमारी छोटी ढाल, हमारा चंगा करने वाला, वो अल्फा और ओमेगा था, आदि और अंत, वो पहला और अंतिम था, वो है, वो आएगा, दाऊद की जड़ और संतान, भोर का तारा, क्यों वो सर्वे सर्वा था, उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी और मृत्यु सदा डंक धारी थी ताकि वो लोगों को डंक मारे। ओ शैतान कहता है, मैंने तुझे ले लिया क्योंकि तूने मेरी सुनी, आपको डंक मारता है, मैं तुझे कब्र में डाल दूंगा, वो भेड़ का लहू तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, वो केवल एक पशु का लहू है। परंतु परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में जान लिया कि एक मेमना आ रहा होगा, जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया हुआ, जी हाँ श्रीमान, और वे उसने उस समय तक प्रतीक्षा की ताकि समय का पूरा होना हो। परंतु एक दिन जब ये मेमना आता है, ये मनुष्य, शैतान भी मूर्ख बन गया, उसने उसे आसपास से देखा, उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो एक आश्चर्य कर्म कर और मैं तुझे ये करते हुए देखूं, मैं तुझे ये करते हुए देखूं, ओहो, मैं उसके मुख पर चिथड़ा लपेटूंगा, तुझे मारूंगा, यदि तू भविष्य रखता है तो हमें बता किसने तुझे मारा, मैं नहीं जानता, मैं विश्वास नहीं करता कि तू वो व्यक्ति है, यदि तू है तो साफ साफ बता कि तू कैसे है, देखिए सब इस प्रकार से, ओ हमें बता कि तू है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। ओ तब क्या उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी? उसने आसपास चेलों को देखा और कहा, मैं अपने पिता से कह सकता था और वो मेरे पास स्वर्गदूतों की 12 सेना भेज सकता था यदि मैं चाहता। पिलातुस ने ये नहीं सुना, आप जानते हैं, यदि तू है, यदि तू है, ओ ये वो नहीं है, क्यों, उसे देखो, लहू बह रहा है, अरे उनमें से कुछ सिपाहियों वहाँ जाओ और उसके मुंह पर थूको, उसका उपहास उड़ाओ, उसके गाल पर से मुट्ठी भर के दाढ़ी उखाड़ लो, ओ ये वो नहीं है, नहीं ये वो नहीं, मैं इसमें अपना डंक गड़ा दूंगा लड़के, मैं इसे वहां ले जाऊंगा, अब मैंने तुझे ले लिया। जब वो अंत में चिल्लाया एली एली मेरे परमेश्वर, वो एक मनुष्य था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गतचमनी बाग में अभिषेक ने उसे छोड़ दिया था, आप जानते हैं उसे एक पापी के समान मरना था, वो एक पापी मरा, आप ये जानते हैं, उसके पाप नहीं परंतु मेरे और आपके। यही जहां प्रेम आता है, कैसे उसने मेरे लिए ले लिए, ओ हालेलुया, कैसे उसने मेरे ले लिए। और वो वहां था, वो अपना मुख नहीं खोल सकता था, उन्होंने डंकधारी ने कहा, आप जानते हैं मैं विश्वास करता हूं कि वो केवल एक साधारण मनुष्य था, वो कुंवारी से नहीं जन्मा, क्योंकि मैंने अपना डंक उसमें बैठा दिया। और यहां वो आता है, उसके डंक को अपने में सुखा दिया, परंतु लड़के ये गलत समय था, तब उसने अपना डंक वापस खींचा, तब से वो और डंक नहीं मार सका, उसने अपना डंक वहीं उसमें छोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठा और कहा, मैं वो जो मर गया था फिर से जीवित हूँ और सदा तक जीवित हूँ, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। जी हाँ श्रीमान, वो देखने में असफल रहा कि वो कौन था, और क्योंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जियोगे, ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ। एक दिन उसके तीन या चार दिन के पश्चात जब वो पिता के पास उठा लिया गया था, वापस आया था, तब कुछ ने कहा, ओ वो तो प्रेत होना चाहिए, उसे तो कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए, हम वो व्यक्ति प्रेत संबंधित है, और तुमने उसे देखा, तुमने दर्शन देखा। नहीं, वो वास्तविक यीशु था। तो मैंने कहा, मुझे उसके हाथों को देखने दो और सब चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा यदि वही है तो। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। कहा, क्या तुम्हारे पास मछली या रोटी है, मुझे सैंडविच दो। और वे उसके पास रोटी लाए और उसने वहाँ खड़े होकर उसे खाया। कहा, क्या आत्मा ऐसे खाती है जैसे मैंने खाया, क्या आत्मा के मांस और हड्डी जैसे मेरे हैं होता है, समझे। उसने कहा, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और पौलुस ने कहा, ये तो अभी तक ठीक ठीक प्रकट नहीं हुआ कि हमारे पास किस प्रकार की देह होगी, परंतु हम जानते हैं हमारे पास उसके समान देह होगी। क्या क्या उसके पास कभी स्वर्गीय देह थीफोनी थी। हाँ श्रीमान, जब वो मरा बाइबल ने कहा कि वो, फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो अधलोक में गया और उसने उन प्राणों को कैद में प्रचार किया। हालेलुया। और उसने ये कैसे किया, उसके पास अनुभव की इंद्रियां थी, उसके पास सुनने की इंद्रियां थी, उसके पास बोलने की इंद्री थी, उसने उसी प्रकार की देह में होकर प्रचार किया जो मैंने उन्हें वहाँ उस महिमा में उस रात्रि देखा था। उसने उन प्राणों को प्रचार किया जो अधलोक में थे, जिन्होंने नूह के धैर्य के दिनों में प्रायश्चित नहीं किया, परंतु जब वो ईस्टर पर जीवित हो उठा, ये संभव नहीं था कि वो देह सड़े, क्योंकि भविष्यद्वक्ता दाऊद ने इसे पहले से देखा, मैं उसके प्राणों को अधलोक में ना छोड़ूंगा, ना ही मैं अपने पवित्र को सड़ने दूंगा, बल्कि मेरी देह आशा में विश्राम करेगी, क्योंकि वो मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना ही वो मेरे पवित्र जन को सड़ने देगा। और 72 घंटों में इसके पहले सड़ाहट आरम्भ हो सके, वो स्वर्गीय देह थिफोनी को, वो देह जिसमें जाकर उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे, जिन्होंने नूह के धैर्य के दिनों में प्रायश्चित ना किया था, फिर जी उठा और अमरण हार ने मरण हार को पहन लिया, और वो खड़ा हो गया और उसने खाया और उसने हमें ये बताया कि वो एक मनुष्य था। हालेलुया। भाई ईवान, हम उसको ऐसे देखेंगे जब वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। जब हम ऊपर नीचे चलेंगे, मैं आपके साथ पहाड़ों पर लाखों वर्ष की यात्रा पर जाऊंगा। देखिए, थोड़े से दिन, थोड़ी सी देर के लिए हम वहाँ पार जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे। आप जानते हैं ये खाने का समय आता है, पहली बात आप जानते हैं, बहन वुड्स ने कहा। मैंने कहा, बहन वुड्स, अच्छा आप इतने समय से कहाँ थी, मैंने आपको समय से नहीं देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे ये 15 मिनट थे। ओ ये 2000 वर्ष पहले था भाई ब्रैनम। ओ आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ओ सही में, सिवाय अच्छे के और कुछ अनुभव नहीं कर सकते। कहें लड़कों यहाँ आओ, मैं भाइयों आपको सब कुछ दिखाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ यहाँ पर पानी का झरना है, सबसे अच्छा जो आपने कभी पिया होगा, और ओ हमें अच्छा बड़ा पानी ठंडा मिलेगा। मैं वहाँ जाऊँगा और अंगूर का एक बड़ा गुच्छा लूंगा और हम वहाँ बैठकर और उसे खाएंगे। क्या ये शानदार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक यही है, ये ऐसा ही है। हमने इसे कैसे पाया, हम इसे कैसे जानते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले हमें ठहराया। किसे, वे जो प्रतिज्ञा के देश में हैं, और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। महिमा की स्तुति हो, ताकि जैसे उसने कहा हम उसकी स्तुति कर सकें। यही वो जो परमेश्वर था, हम उसकी स्तुति करना चाहते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया। मसीह में हम ग्रहण योग्य हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। मुझे वापस लेपालकता पर जाना है, परंतु मैं यहाँ पापों पर एक मिनट के लिए रुकना चाहता हूँ। पापों, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? आप जानते हैं कि परमेश्वर पापी को पाप करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, वो उसको पापी होने के लिए दोषी ठहराता है। यदि एक पापी सिगार पीता है, वो उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। जो भी है वो पापी है, समझे? उसके पास कोई पाप नहीं है, पापी के पास नहीं है, वो तो केवल पापी है। देखिए, उसके पास कोई पाप नहीं है, परंतु आपने पाप किया। आप जो मसीही हैं, आप ध्यान दें, वो यहाँ कलीसिया से बातें कर रहा है। उसे ठीक रखा, समझे? पापों की क्षमा, SINS, पापों। हम पाप करते हैं, परंतु पापी तो बस पापी है, परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करता। अब आप कहते हैं अच्छा, हम वहाँ गए और एक पुरुष को गोली मार दी। अब आप इस विषय में क्या करने जा रहे हैं? ये मेरा कार्य नहीं है, मैं सुधारक नहीं हूँ, मैं एक प्रचारक हूँ। कानून इस मामले को देखेगा, वे सुधारक हैं, वे हैं। अच्छा, कहते हैं कि उसने व्यभिचार किया है, ये कानून पर निर्भर करता है, ये उसके और कानून के मध्य में है। मैं सुधारक नहीं हूँ, मैं लोगों को सुधारता नहीं हूँ, मैं उनका मत परिवर्तन करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक प्रचारक हूँ, मेरा कार्य उसको परमेश्वर के पास ले जाना है। यदि उसने पाप किया, ये उसका कार्य है, वो पापी है। परमेश्वर उसे ऊंचे स्तर पर दोषी ठहराता है। वो आरंभ से ही पापी है, वो आरंभ से ही दोषी है। उसके पास तो पहला आधार भी नहीं है, वो तो कहीं नहीं है, वो आरंभ से ही पापी है। उसके पास कोई पाप नहीं है, वो पापी है। आप बाहर जाकर ये नहीं कह सकते इतनी तो रात्रि है और इतनी रात्रि नहीं है। नहीं, ये सारी की सारी रात है, बस सारी रात है, यही जो परमेश्वर ने कहा। ये ठीक बात है, वो केवल एक पापी है, बस। अब उसने ये किया है, इतनी रात है, ये वास्तविक चमकीली रात्रि है। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि ये केवल रात्रि है, बस, समझे? मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर इतना उजियाला है, नहीं, ये तो सारा का सारा उजियाला है। देखिए, केवल उजियाला, आप नहीं कह सकते कि कितना, समझे? परंतु यदि इसमें काला धब्बा है तो फिर इसमें अंधेरा है। इसलिए पापों, SINS, हमारे पास हमारे पापों के लिए उसके क्या लहू के द्वारा क्षमा है, मूल्यवान लहू, उसके असीम के द्वारा। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि हम योग्य हैं, हमने अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ किया है। उसका क्या अनुग्रह! ओ प्रभु, प्रभु, मैं अपने हाथों में कुछ भी नहीं लाता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं कर सकता था। देखिए, उसने मुझे पहले से ठहराया, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे चुना, मैंने उसे कभी नहीं चुना, उसने मुझे चुना, उसने आपको चुना, उसने हम सबको चुना, हमने उसे नहीं चुना। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता पहले उसे ना खींच ले। वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा, और उनमें से कोई भी ना खोया सिवाय विनाश के पुत्र के, कि वचन पूरा हो। आपने समझा? कहा, परंतु सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। ओ, मैं बहुत देरी कर रहा हूँ क्या नहीं? और मैं इससे कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अभी तो मैंने इस पर आरंभ भी नहीं किया। मुझे जल्दी जल्दी करना है, अब जल्दी ही मुझे किसी बात पर आना है, और हम जल्दी करते हैं। मुझे अभी इस लेपालकता पर वापस जाना है, एक मिनट। ओ, क्या आप एक मिनट के लिए मुझे क्षमा करेंगे? आइए हम इसे यहाँ पर लें। कुछ लोग दूर जॉर्जिया से हैं, यहाँ केवल आज रात्रि के लिए, उनके हृदय को आशीष मिले। अब जॉर्जिया के भाई लोगों और टेक्सास और आप लोगों, जहाँ कहीं से भी हैं, इसे सुने। पांचवा पद, हम इसे कुछ मिनटों के लिए लेंगे। हमें पहले से ठहराया के लिए, के लिए का क्या अर्थ है? शब्द के लिए, इसका अर्थ है कि हम किसी चीज के लिए आ रहे हैं। मैं झरने तक जा रहा हूँ, मैं कुर्सी तक जा रहा हूँ। ह्यूम्स, तुम ये समझे? मैं मेज तक जा रहा हूँ।
Now he predestinated us unto the adoption.
और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। कितने आनंद के साथ, ये किसका आनंद था, किसकी भलाई, उसके अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार उसकी अपनी। अब लेपालकपन क्या है, अब मैं इसे ले लूं, मैं नहीं जानता कि इसे लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है, परंतु मैं इस पर जोर दूंगा। तब यदि कोई प्रश्न है तो आप बाद में किसी समय पूछ सकते हैं। संदेश में कुछ सुनिए, आपका लेपालक होना आपका जन्म नहीं है, आपका लेपालक होना आपको स्थान पर स्थापित करना है। जब आपका नया जन्म हुआ, यहूना 1:17 में विश्वास करता हूँ, जब हम परमेश्वर के आत्मा से जन्मे तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परंतु हम पहले से ठहराए हुए थे। अब मैं आपको यहाँ पर लाने का यत्न कर रहा हूँ कि अंतिम दिन के ये पुत्र, आप देखिए, देखने को हम लेपालक होने के लिए ठहराए गए। अब हम यहाँ पर हैं। अब ये बात पेंतिकोस्तलों को थोड़ा दुख पहुँचाती है। वे कहते हैं, मैंने नया जन्म पाया है, प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा मिल गया, बहुत अच्छा, आप परमेश्वर के बालक हैं, ये ठीक बात है, परंतु फिर भी ये वो नहीं है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आप लेपालक होने के लिए ठहराए गए थे। लेपालकता, ये पुत्र को यथा स्थान पर रखना है। मैं इसके बहुत समीप हूँ, क्योंकि बेकी ने मुझे बताया है कि मैं इसके बहुत समीप आ गया हूँ। आप पीछे नहीं सुन सक रहे हैं। मैं, देखिए, एक बालक, आप में से पुराने नियम की लेपालक की व्यवस्था को कितने लोग जानते हैं? ठीक है, आपने देख लिया है, एक पुत्र जन्मा था। मेरा विश्वास है कि मैंने इसे किसी उपदेश में लिया था। जीन, वो क्या था, तुम्हें स्मरण है, ये टेप में है। ओह, वो क्या था, मैंने उस पर प्रहार किया था। ओह हाँ, मुझे ये मिल गया। तुम इसकी सुनो, बालकों का लेपालक होना। अब पुराने नियम में जब एक बालक एक परिवार में जन्म लेता था, वो जन्मा था तो वो एक बालक था, क्योंकि उसने अपने माता पिता से जन्म लिया, वो परिवार का एक पुत्र था और सब चीजों का वारिस। अब परंतु ये पुत्र एक शिक्षक के द्वारा बड़ा किया गया। गलतियों 5:17-25 पद तक, ठीक है, वो एक शिक्षकों के द्वारा पाला गया, शिक्षकों के द्वारा। अब मान लीजिए, यदि मेरे यहाँ एक पुत्र जन्म लेता, मान लीजिए मैं एक पिता, और यही कारण है कि किंग जेम्स में, कितनों ने कभी ये सोचा कि ये पढ़ने में अजीब सा है, किंग जेम्स संस्करण में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से बड़े बड़े घर हैं, एक घर, बहुत बड़े बड़े घर, समझे। वास्तव में बाइबल के दिनों में किंग जेम्स के लिए अनुवाद किया गया, एक घर एक राज्य था, मेरे पिता के राज्य में बहुत सारे बड़े बड़े घर, घर में नहीं बड़े बड़े घर, परंतु वो इस राज्य का पिता कहलाया गया। उनके पास बाइबल में, ये बाइबल के अनुसार है, ये इसी प्रकार से है, जब पिता के पास एक बड़ा विशाल हजारों एकड़ का फार्म था या कुछ ऐसा, उसके पास लोगों के झुंड वहाँ रह रहे थे, उसने वहाँ पर रहने वाले लोगों को भेड़ों की देखभाल के लिए मजदूरी पर लिया, उसके पास कुछ यहाँ पर पशुओं की देखभाल के लिए थे, यहाँ उसके पास कुछ, वहाँ ऊपर की पहाड़ी पर चले गए सैकड़ों मील, और कुछ यहाँ उसके पास बकरियों की देखभाल के लिए, और कुछ उसके पास खच्चरों की और भिन्न भिन्न चीजों की देखभाल के लिए थे। बस उसके पास एक बड़ा राज्य था, और वो अपने एक छोटे से गधे पर सवार हुआ और चारों ओर प्रत्येक को देखने के लिए गया, और देखा कि वे कैसे कर रहे हैं, भेड़ों के बाल कतरने वाले और इस प्रकार की सारी चीजें। उसके पास समय नहीं था। जब मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, मैं यहीं पर रहने का यत्न करूँगा। क्या आप अब मुझे सुन सकते हैं यहाँ से? वो सवार होकर चला गया और अपने राज्य की देखभाल करने के लिए। इसलिए अब वो चाहता है कि पुत्र उसकी हर चीज का वारिस होने जा रहा है जो उसके पास है, वो एक वारिस है। और जब हम परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के द्वारा जन्म लेते हैं तो हम स्वर्ग के वारिस हैं, यीशु के साथ संगी वारिस, क्योंकि उसने हमारा स्थान ले लिया, वो हम बन गया यानी पाप, ताकि वो हम वो बन सकें धर्मी, समझे। वो मैं बन गया ताकि मैं वो हो जाऊं। देखिए उसके संगी वारिस। ठीक है, अब स्मरण रखें कि आप में से प्रत्येक, अब स्मरण रखें परमेश्वर ने आपको ठहराया है अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा कि आप इस पर आ रहे हैं। प्रत्येक जो समझ रहा है अपने हाथ उठाए। परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा आपको पहले से ठहराया कि आप प्रतिज्ञा के देश में आएं। आज एक मसीही के लिए प्रतिज्ञा का देश क्या है? यदि आप जानते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है, उनके लिए जो दूर दूर हैं। यहोवा यूं कहता है, ये अंतिम दिनों में घटित होगा कि मैं अपना आत्मा हर देह पर उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां, और यशाया 28:18 वचन पर वचन, आज्ञा पर आज्ञा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो अच्छा है उसे कस कर पकड़े रहो। कांपते हुए होंठों के साथ और अन्य भाषाओं के साथ मैं इन लोगों से बात करूंगा। और ये विश्राम है, विश्राम सबत का देश, जो मैंने कहा कि उन्हें उसमें प्रवेश करना चाहिए, और इसके लिए वे नहीं सुनेंगे, परंतु अपने अपने सिर हिलाकर चले गए और इसे नहीं सुनेंगे। समझे? बिल्कुल ठीक। ये क्या था? ठीक उन लोगों के समान जो लोग कनान से आए, यानी मिस्र से आए, जंगल में से होते हुए, और ठीक अगला इतने पास की अंगूर चखे जो उस देश से आए थे। भाई वहाँ वे पुरुष मुझसे चाहते हैं कि उसे फिर लूं, जो इब्रानियों 6 में है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वे किनारे के विश्वासी, वे वहाँ कभी नहीं जाएंगे, वे वहाँ नहीं जा सकते। यीशु ने कहा, उन्होंने कहा, हमारे पुरखाओं ने जंगल में मन्ना खाया, और यीशु ने कहा, और वे सब मर गए। वो चीज अलग हो गई, उनमें से हर एक मर गया। ये ठीक बात है। कहा, परंतु मैं जीवन की रोटी हूँ, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से आई है, जो मनुष्य इस रोटी में से खाएगा वो कभी न मरेगा। ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, यदि वो इसे खाएगा तो अनंत जीवन पाएगा। मैं अदन की वाटिका से जीवन का वृक्ष हूँ। अब देखिए, ये लोग बहुत समीप आ गए। देखिए, यदि आप इब्रानी 6 में ध्यान दें, उस पर वापस नहीं जा रहे हैं, परंतु इब्रानी 6, ये लोग एक बार भागी हुए इतने पास आए और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा। वे आसपास बैठे, उन्होंने चंगाई होते देखी, उन्होंने लोगों को परमेश्वर की सामर्थ में देखा, उन्होंने जीवनों को बदलते देखा, परंतु वे वहाँ पर हाथ नहीं रखेंगे। नहीं श्रीमान, नहीं। और आने वाले संसार की सामर्थ को चखा, और यदि वे प्रायश्चित से स्वयं को फिर नया बनाने का यत्न करना हो, तो उनके ये देख लेने से, तो वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, और उस वाचा के लहू को जिससे वे शुद्ध हुए थे। मैं उस कलीसिया से संबंधित हूँ जो पवित्रीकरण में विश्वास करती है। जहाँ तक ये जाता है अच्छा है, परंतु आप अधिक दूर ना जाएं। समझे? जी हाँ श्रीमान। सुनसान जंगल ने उन्हें पवित्र किया। हाँ, वास्तव में उनके पास पीतल का सांप था, पीतल की वेदी, वहाँ हर चीज पवित्र की हुई, परंतु वे विश्राम के लिए फिलिस्तीन में प्रवेश कर गए। क्या नहीं? यहाँ इब्रानी 4 में देखिए, क्या उसने दूसरे विश्राम के लिए नहीं कहा? परमेश्वर ने 7वें दिन की सृष्टि की और उन्हें 7वें दिन विश्राम दिया। दूसरे स्थान में उसने विश्राम दिन के लिए बोला, और आज दाऊद में, तब उसने उन्हें दूसरा विश्राम दिया। बोझ से थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस विश्राम में प्रवेश करो, क्योंकि हम जो इस विश्राम में प्रवेश कर चुके, अपने कार्यों को बंद कर चुके, जैसे परमेश्वर ने अपने सबत में किया, निश्चय ही यही आपका सबत है, विश्राम। यहाँ प्रतिज्ञा के देश में आपका वास्तविक विश्राम है। पवित्र आत्मा लोगों की प्रतिज्ञा है, और वे क्यों शिक्षित ज्ञानी प्रचारकों को चाहेंगे जो उन्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने दें, और बाल कटाने दें, और लिपस्टिक लगाने दें, और मनुष्य जो जुआ खेलते और बियर पीते और चुटकुले सुनाते और इसी प्रकार जीवन बिताते हैं और स्वयं को कलीसिया का सदस्य कहते हैं, वे क्यों इस प्रकार की चीजों को लेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई का इनकार करेंगे? क्यों? बाइबल ने कहा परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, जो हड्डियों और हृदय के विचारों को काटता है, जी हाँ, यहाँ तक कि मस्तिष्क के विचारों को भी। और यदि हम संसार या संसार की चीजों से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर का भी हम में नहीं है। बहुत से बुलाए गए, थोड़े से चुने गए, क्योंकि सीधा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, थोड़े ही होंगे जो उसे पाएंगे। उस दिन बहुत सारे मेरे पास आएंगे और राज्य में बैठेंगे, यीशु ने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ, परंतु राज्य की संतान बाहर निकाली जाएगी और कहते हैं क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, क्या हमने प्रचार नहीं किया, क्या हम डॉक्टर अमुक अमुक नहीं और आदरणीय अमुक अमुक और अमुक, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ तुम कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें नहीं जाना। वो सब नहीं जो प्रभु प्रभु कहते हैं अंदर प्रवेश करेगा, परंतु केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है वही भीतर जाता है। आप यही इसी स्थिति में हैं जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे हैं। हम इसमें कैसे जाते हैं? हम इसके लिए ठहराए गए हैं। कलीसिया परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से ठहराए गए हैं, किस लिए? उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सम्मान के लिए, उसकी महिमा के लिए और आराधना और परमेश्वर की महिमा के लिए। पिताजी वहाँ आरंभ में बैठे हैं, स्वयं अस्तित्व, उसके आसपास कुछ नहीं है, अपनी आराधना के लिए कुछ चाहता है, इसलिए उसने पहले से अभिषिक्त और ठहराई हुई कलीसिया और संसार के रचने से पहले और उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे, जब वे पृथ्वी की सृष्टि से पहले घात किया गया, ताकि वे उसकी महिमा में प्रकट हो सकें और उसकी प्रशंसा अंत समय में, जब वे सारी वस्तुएं उस एक मनुष्य में एकत्र की जाएंगी मसीह यीशु में, ओ महिमा हो। यही बात है, ये केवल और यही ठीक वहाँ पर है मेरे भाई बहनों, इससे कभी ना हटना। परमेश्वर उसके चुनाव अनुग्रह के द्वारा आपको बुलाया है, परमेश्वर ने अपने चुनाव अनुग्रह के द्वारा आपको पवित्र किया, परमेश्वर अपने चुनाव अनुग्रह के द्वारा और उसकी सामर्थ आपको बपतिस्मा दिया और आपको विश्राम देश में रखा। वे जो इस विश्राम में प्रवेश कर गए, अपने भटक जाने से रुक गए, उन्होंने अपने कार्य समाप्त कर लिए जैसे परमेश्वर ने किए, उनके पास ना बता सकने वाला आनंद और महिमा से भरा हुआ है, जीवन का वृक्ष उनमें फल फूल रहा है, उनके पास धीरज, नम्रता, भलाई, धैर्य, विश्वास बनाता है, विश्वास, नम्रता, सज्जनता और आदि आदि है, जीवन का वृक्ष उनमें खिल रहा है, क्योंकि उनकी आशा का लंगर मसीह यीशु में है, पवित्र आत्मा की गवाही चिन्हों के साथ गवाही देता है और आश्चर्यकर्म विश्वासियों से होते हैं, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, जब वे चलते हैं तो बीमार चंगे करते हैं, वे प्रेतों को निकालते हैं, वे अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, वे दर्शन देखते हैं, वे परमेश्वर के संग चलते हैं, वे परमेश्वर से बातें करते हैं, उन्हें कोई दुष्ट आत्मा हिला नहीं सकती, वे स्थिर हैं, प्रतीक्षा देख रहे हैं, बीती बातों को भूलते जा रहे हैं, वे अपनी स्वर्गीय बुलाहट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मसीह यीशु में बुलाए जा रहे हैं, वे वहाँ पर हैं, वे वहाँ हैं, यही कलीसिया है। वे वहाँ कैसे पहुँचे? आप नहीं कह सकते, अच्छा प्रभु आप जानते हैं, एक दिन मैंने सिगार पीना आरंभ किया और मैं गिर पड़ा, तब मैंने सोचा मैं करूँगा, ओ नहीं 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 नहीं, पहले से ठहराए हुए, उसने हमें बुलाया और जब हम उसके पीछे चले, वो तब ही हम कहते हैं परमेश्वर हम खोए हुए थे और बेकार, हमारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि स्वयं को बचा लेते, हमारा स्वभाव आरंभ से ही सूअर का था। आप जाकर सूअर के बाड़े को देखें और पुरानी सूरी को देखें और कहें, अब इधर देखो बड़ी बूढ़ी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कि कीचड़ में मुंह मारो, वो कहेगी ओइंक ओइंक, समझे? अब ये वैसे ही है जैसे आप अपने को बचा रहे हो, ठीक ऐसे ही। आप कहते हैं महिला आपको इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ये ताश की पार्टी में नहीं होना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, श्रीमान आपको ये नहीं करना चाहिए, वो कहता है ओंग ओंग, मैं ओंग ओंग से हूँ, ओ ओंग, ये वही है जो वे जानते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आपके समान ही भला हूं जैसे आप हैं, ओंग ओंग। देखिए वे पवित्र आत्मा की अगुवाई को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा यदि तुम संसार से प्रेम करते हो या संसार की वस्तुओं से, तो तुम में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। उन्हें क्या विचित्र बनाता है? आप एक पवित्र राष्ट्र हैं। आपने क्या किया है? उस देश के बाहर प्रवेश कर गए। आप दूसरे देश में हैं। आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? वो प्रतिज्ञा का देश है। किस प्रकार की प्रतिज्ञा? परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ये घटित होगा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने इस प्रतिज्ञा के देश में बपतिस्मा लिया। आमीन। भाई और बहनों, हालेलुया। हृदय की शुद्धता के साथ, कोई द्वेष नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कुछ नहीं। मैं चिंता नहीं करता यदि एक भटक जाए, कोई मतलब नहीं। वो क्या करता है? आप उसके पीछे जाएंगे। अधिक समय नहीं हुआ, मैं एक भाई के पीछे जो भटक गया था गया। एक नवयुवक ने मुझसे कहा, उस नीच को जाने दो, उसे छोड़ दो। मैंने कहा, यदि मैं कभी ऐसे एक स्थान पर आ जाऊं कि मेरा हृदय मेरे भाई के साथ ना हो, तो फिर मेरे लिए वो समय है कि मैं वेदी पर जाऊं, क्योंकि मैं अनुग्रह से गिर गया हूं। मैंने कहा, मैं तब तक जाऊंगा जब तक उसके शरीर में श्वास है, और मैं मार्ग में कहीं उसे पकड़ लूंगा। जी हाँ श्रीमान, और मैंने उसे पकड़ लिया। हालेलुया, उसे वापस ले आया। जी हाँ श्रीमान, अब वो सुरक्षा में आ गया है। जी हाँ श्रीमान, वो वैसे ही निश्चित रूप से भटक कर चला गया था जैसे संसार। कुछ समय पहले जब मैंने उस बेचारी महिला को बैठे देखा, और शरीफ ने मुझे बुलाया, कहा उसे सीधी जैकेट में होना चाहिए। कहा वो बस उन्मादी है, उसका चित्त ठिकाने नहीं है। वो उन्होंने उसे होटल में रखा और वे आए। मैंने कहा ये ठीक है। शरीफ ने कहा, क्यों बिली? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसे तब से जानता हूँ जब से मैं छोटा लड़का था। उसने कहा, यदि कुछ ऐसा हो कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है। कहा क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, परंतु वो कर सकता है। मैंने कहा एक मिनट। इसलिए वे उसे वहाँ बाहर ले आए, और जब उसे थोड़े समय के लिए शांति में छोड़ दिया गया था, वो क्या था? हमने उसके लिए प्रार्थना की। आमीन। वो इतनी थी। उन्होंने कहा, क्या आप डॉक्टर को लेना चाहते हैं? उसके पति से कहा, क्या आप डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं? कहा, डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये ठीक बात है, ये पागल है, डॉक्टर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कहा कि हमारी आशा केवल वहाँ पहुँचने की है। और उसने कहा, बिली मैं इसे नहीं समझता। मैंने कहा, मैं तुमसे आशा नहीं करता। देखिए, आशा नहीं करता कि आप, परंतु ओ प्रभु, ना ही मैं इसे समझता हूँ, नहीं, परंतु भाई परमेश्वर जो स्वर्ग में है। मैं एक समय बहुत दूर था, कोई चीज मेरे पीछे पीछे आई। आमीन। ये इसलिए नहीं था क्योंकि मैं आना चाहता था, परंतु नहीं, कोई चीज मेरे पीछे आई, क्योंकि संसार के रचने से पहले परमेश्वर ने ठहराया, हालेलुया, कि हम उसके होंगे उसके आदर और महिमा के लिए। सुनिए, उनको जिन्हें उसने पहले से जाना, उसने क्या बुलाया? ये ठीक है, क्या उसने आपको बुलाया? जी हाँ, उसने आपको क्यों बुलाया? उसने आपको पहले से जाना। जिन्हें उसने पहले से जाना, उसने बुलाया। जिन्हें उसने बुलाया, उसने धर्मी ठहराया। क्या ये ठीक बात है? और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया, उसने महिमायुक्त किया। आमीन। यही है जो बाइबल ने कहा, जिन्हें उसने पहले से जाना, उसने बुलाया। हर एक पीढ़ी में जिन्हें उसने बुलाया, उन्हें पहले ही महिमायुक्त कर चुका है। क्या मुझे यहाँ पवित्र वचन पढ़ने दें? ठीक है। और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति। ओ, क्या आप इसे समझे? उसकी महिमा की स्तुति, ताकि वो अनंत युगों में हो सके जो आने हैं, और उसके बालक चिल्लाएंगे, अब्बा पिता, अब्बा पिता। और स्वर्गदूत कहता है, वे क्या बातें कर रहे हैं? वे किस विषय में बातें कर रहे हैं? उड़ाऊ पुत्र में कितनी सुंदरता से दर्शाया गया है, मैं खो गया था, ये मेरा पुत्र है, ये खो गया था, अब ये मिल गया है, ये मर गया था और जीवित हो उठा है। मोटा ताजा बछड़ा लाओ, बढ़िया वस्त्र और अंगूठी उसकी उंगली में पहनाओ, और हम, कोई आश्चर्य नहीं कि कब भोर के तारों ने एक संग गाया और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए जब उन्होंने उद्धार की योजना को देखा। परमेश्वर पृथ्वी के रचे जाने से पहले आपके नाम को पुस्तक में लिख रहा था। आप कहते हैं कुछ इसी प्रकार से केल्विन ने विश्वास किया। मैंने केल्विन का विश्वास नहीं किया। केल्विन एक हत्यारा था। केल्विन ने एक मनुष्य को मार डाला था क्योंकि उसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। वो एक धूर्त था, उसे स्वयं मत परिवर्तन की आवश्यकता थी। जी हाँ श्रीमान, परंतु उसने क्या कहा? कुछ बातों के विषय में उसने कहा ठीक था। परंतु वो क्या उसका कार्य है? एक मनुष्य उस मनुष्य को कुछ ऐसा करने के लिए मार डाले, ये भयानक है, पाप भरा, ठीक है। हम पर बहुतायत से किया, ओ रुकिए, मुझे वो लेपालक पद नहीं मिला है। क्या मुझे मिला? क्या मुझे बहुत देर हो गई? देखें कि ये घड़ी यहाँ क्या कहती है, हमारे पास कौन सा समय है। ठीक है, हम बस 10 मिनट लेते हैं इन लोगों के लिए जो दूर से आए हैं। देखिए देखिए, लेपालकता, मैं आपको दिखाऊं ये अब क्यों किया गया। एक पिता के पास बड़ा राज्य है, वो चारों ओर घूमता है। अब उसके पास एक पुत्र जन्मा, ओ वो बहुत आनंदित है, ये परमेश्वर है। इसलिए आप जानते हैं कि वो पिता क्या करता है, वो एक बहुत अच्छा पालने बढ़ाने वाला शिक्षक ढूंढता है। आप जानते हैं कि शिक्षक क्या होता है, क्या आप नहीं जानते? ये एक विद्यालय का शिक्षक है, उसने एक अच्छा विद्यालय शिक्षक ढूंढा, वो सारे देश में ढूंढ सकता था। और तब हम जा रहे हैं, सुनिए, और उसने उत्तम विद्यालय का शिक्षक जो वो ढूंढ सकता था ढूंढा। वो किसी बदमाश को नहीं लेता, वो अपने लड़के को वास्तविक व्यक्ति चाहता है। क्या आप अपने बालकों को ऐसा चाहते हैं? निश्चय ही आप जो सबसे उत्तम जो दे सकते हैं। जी हाँ श्रीमान, यदि एक स्वाभाविक मनुष्य ऐसा सोचता है, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर अपने बालकों के लिए क्या सोचता है? सबसे अच्छा जो वो पा सकेगा, इसलिए वो एक व्यक्ति चाहता है जो कि ईमानदार होगा। अब वो नहीं ये कहने के लिए व्यक्ति को नहीं चाहता। अब देखिए, मैं जूनियर, आप जो चाहे करें प्रिय। ओ हाँ पिता, ओ वो ठीक चल रहा है, वो एक अच्छा लड़का है। उसकी पीठ थपथपाएं और उसकी टोपी में पंख लगाएं? नहीं नहीं, वो व्यक्ति अभी झिड़का जाएगा। निश्चय ही वो एक मनुष्य को चाहता है जो सच्चा हो। यदि वो लड़का सीधा चल रहा है तो उसे बताए, यदि वो नहीं तो उसे बताए कि वो क्या गलती है। और यदि एक संसारिक पिता ये सोचता है, क्या आप नहीं चाहेंगे एक व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी से रहे, विद्यालय का शिक्षक आपके बालकों के प्रति ईमानदार रहे? निश्चय ही। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है? और वो जानता है, हम नहीं करते, वो करता है। हम सीमित हैं, हम नहीं बता सकते, परंतु वो अनंत है, वो जानता है। इसलिए आप जानते हैं कि पिता ने क्या किया, उसने कभी नहीं कहा कि मैं पोप को लेने जा रहा हूँ कि मेरे बालकों का ध्यान रखे, ना ही उसने ये कहा मैं एक बिशप को लेने जा रहा हूँ। नहीं, उसने ये नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि पोप गलत होगा, वैसे ही बिशप गलत होगा, समझे। उसने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कलीसिया की देखरेख के लिए जनरल ओवरसियर लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, उसके पास पवित्र आत्मा है, वो उसका शिक्षक है, ओ उसके बालकों को बड़ा करने के लिए। ठीक है, तब आप कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा ये जानता है? वो मनुष्य के होठों से बोलता है, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि वो सत्य बता रहा है? जब आप पवित्र आत्मा को होठों से बोलते हुए देखते हैं, जो कि हर बार सत्य बता रहा है, आने वाली बात की भविष्यवाणी कर रहा है और ठीक सैमुएल के समान सही घटित हो रहा है, तब आप जानते हैं कि ये सत्य है, ये ठीक चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि वो बोलता है और जो वो कहता है वो घटित नहीं होता तो उसकी मत सुनो, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूँ, परंतु यदि वो करता है तो फिर उसकी सुनो, मैं उसके साथ हूँ, समझे। आप उसी स्थिति में हैं, वो ऐसे ही करता है। अब तब वो आसपास जाता है। अब आप क्या सोचते हैं कि वो शिक्षक क्या कहेगा, यदि उसे पिता के पास जाना पड़े और कहे कि आपके बालक विचित्र व्यवहार कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपका वो लड़का वो आवारा है, वो पराजित है, मैंने एक व्यक्ति कभी नहीं देखा। ओ आप जानते हैं कि वो क्या करता है, और आपकी वो लड़की, ओ मैं नहीं जानता कि आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या, वो ऐसी दिखाई पड़ती है, वो वहाँ फिलिस्तीनियों की लड़कियों के समान रंगी हुई है। जी हाँ, वो उनके समान व्यवहार करना चाहती है। मेरी पुत्री? हाँ, आपकी पुत्री। यही आज पवित्र आत्मा को कलीसिया के विषय में कहना पड़ेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हम बेदारी नहीं ला सकते, समझे। अब ये सत्य है। ओ, आपके पुत्र के विषय में क्या है? यही बात है। क्या? अच्छा, आप जानते हैं कि आपने सदा कहा है कि उन भेड़ों को उस चरागाह में चराना चाहिए, वहाँ पर भेड़ का भोजन है। हाँ, आप जानते हैं कि उसने क्या किया, वो उन्हें झाड़ियों में खदेड़ कर ले गया, बस उन्हें वहाँ ले गया और उन्हें सकरी खाड़ी के पास जमा कर दिया, उन्हें वहीं झंकाल के ढेर पर छोड़ दिया और उन पुराने पेड़ों को खा रही हैं। वे इतनी बेचारी हैं कि वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ये बिशप पास्टर जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी परेशान भेड़ों का झुंड नहीं देखा। वो ये पसंद नहीं करता, नहीं। और आप जानते हैं क्या, वे पशु वहाँ पर हैं। आप जानते हैं कि आप आपने उन्हें बताया वहाँ अच्छा अच्छा भोजन खिलाएं, आप जानते हैं कि उन्हें मोटा कर दें? हाँ, आप जानते हैं कि वो उन्हें क्या दे रहा है? नहीं, वही पुरानी लोहा युक्त घास। हाँ, वो उन्हें संस्थाओं आदि का सदस्य बनवा रहा है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा? आपने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा? आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा है? वहाँ बाहर सिगार पीते हुए जा रहे हैं, पिछड़ते हुए। उसकी पत्नी उसके साथ है, वो छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, जैसे कि फिलिस्तीनी वहाँ कर रहे हैं। जी हाँ, इस प्रकार का संदेश पवित्र आत्मा को कलीसिया के विषय में आज लेना ही है। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं? यही लेपालक पद है। उसने क्या किया है? वो क्या करता है? उसने हमें लेपालकता के लिए ठहराया है। वो हमें पवित्र आत्मा देता है, परंतु एक मिनट प्रतीक्षा करें। लेपालकता, इसी के विषय में हम बात कर रहे हैं, लेपालक पद। अच्छा, आप जानते हैं कि वो क्या करता है? बिशप उस दिन आता है और बताया, उसने वहाँ चंगाई की, एक छोटी सभा की, और बिशप वहाँ आया। कुछ लोग, एक भाई आया और बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा, आप इसे बंद करो। ओह हाँ फादर बिशप, मैं ये करूँगा। क्या आप सहयोग नहीं देंगे? ओ नहीं नहीं फादर बिशप, बिल्कुल नहीं। और उधर मैं आया और आपके वचन से सत्य बताया। देखिए, ये यहाँ पर है। मैंने आपकी व्यवस्था उनके लिए ठीक ठीक पढ़ी कि क्या करना है, और वो उनकी नहीं सुनेगा। उसने कहा, ओ ये तो दूसरे युग के लिए था, दूसरा पुत्र किसी दूसरे समय के लिए, उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। आप उसी स्थिति में हैं। यही मित्र, अब ये सत्य है। अब क्या आप नहीं देखते कि कलीसिया कहाँ से अपने स्थान से हटी हुई है? क्यों हमारे पास बेदारी नहीं है? क्यों हमारे साथ चीजें नहीं चल रही हैं? ये यहीं पर है। यहोशु कहता है, गाद, मैं तुम्हें चाहता हूँ अंतिम रूपरेखा के अनुसार आपका स्थान यहाँ पर है, ठीक यहीं। गाद, तुम यहाँ आकर और यहीं रुको। बिन्यामीन, आप यहाँ पर जाएं, और अब आप लोग फिलिस्तीन की सीमा से अलग रहें। और यहोशु वापस आता है, यहाँ ये सब फिलिस्तीन में है, वही पुराना शोरगुल, इस प्रकार से नाचना, और सारी स्त्रियां रंगी हुई हैं और चारों ओर नाच रही हैं, एक महान समय है। और यहोशु अपने सिर को खुजला रहा है और कहता है, अब क्या? अब ठीक यही हो रहा है। सब नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब नहीं, परंतु बहुत सारे। ठीक है, अब क्या होता है? यही घटित हुआ। क्या आप कल्पना नहीं करते कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा पिता के सामने लज्जित, जब उसे यही कहना था, ओ प्रभु, मैंने उसे बताया, परंतु वो इसे नहीं सुनेगा। मैंने उसे ये बताया और उसे पुस्तक में से पढ़ाया। मेरे पास एक छोटा सा सेवक आया है और उसे दिखाता है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप जानते हैं क्या, वो उनमें से एक बकरियों का चरवाहा यहाँ आया है और उसे बताता है कि ये दूसरे युग के लिए था, समझे? और उसका बुरी बदबू वाला समय, वो वहाँ पर बकरी की बदबू के साथ पहुँचा। आप जानते हैं सिगारों की, और आप जानते हैं, और आदि आदि, और इतनी बदबू के साथ वो वहाँ पर आया, समझे? परंतु मैं आपको बताता हूँ कि उस बकरी के चरवाहे के पास लगाने के लिए बहुत सारे तमगे थे। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप उसका नाम कागज पर लिखेंगे तो उसकी निधन सूचना उसके उपनामों से आधा कागज भर देगी। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही वे उसे उस देश में पसंद करेंगे। परंतु मैं आपको बताता हूँ, वास्तव में वो नहीं जानता कि भेड़ों को कैसा खिलाना चाहिए। इस विषय में ये एक बात है, बस वो मेरी सुनेगा ही नहीं। पवित्र आत्मा कहता है, मैंने यत्न किया कि उसे बताऊं, आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, परंतु वो इसे नहीं मानेगा। वो महान डरपोक है जो मैंने कभी जीवन में देखा। जी हाँ, और कलीसिया ने उसे देखरेख करने वाला बनाया है, एक बिशप आदि आदि, सारे लोग उसकी सुन रहे हैं। और तब आप जानते हैं कि क्या, वे उन्हें लेते हैं, वहाँ उनके पास एक चीज है जिसे टेलीविजन कहते हैं। आप उसे इस प्रकार से आरंभ करते हैं कि, और वे स्त्रियाँ आकर और शुरू हो जाती हैं, सब प्रकार के आधे कपड़े, और आप जानते हैं कि आपकी बहुत सी पुत्रियाँ, ओ निश्चय ही नहीं, समझे? कहते हैं, हाँ वे हैं, हाँ वे इसे कर रहे हैं। उनमें से कुछ बेदारी के लिए चिल्ला रहे हैं, पिता। उनमें से कुछ इसे वास्तव में चाहते हैं। उनमें से कुछ वास्तव में सही चाल चल रहे हैं। उनमें से कुछ वचन पर उतने ही सच्चे हैं जितने हो सकते हैं। दूसरे नहीं जानते कि क्या करें, वे वहाँ भटके हुए हैं। आप जानते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वे सनकियों का झुंड है। अच्छा, इससे मुझे बुरा लगता है, परंतु अब हम चित्र को बदलें। अब पिता, उसका पुत्र एक अच्छा लड़का है, उसका पिता ठीक ठीक साथ यहाँ एक शिक्षक पवित्र आत्मा है। उसने कहा, पवित्र आत्मा किधर? मैं जाने वाला हूँ। शिक्षक ने कहा, मैं ठीक आपके साथ चलूंगा, मैं ठीक तुम्हारे साथ चलूंगा। ओ पहाड़ बहुत ही ऊंचा है पुत्र, मैं ठीक तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे तुम पर विश्वास है। यदि मैं थकने लगूं, मैं अपना हाथ उठाऊंगा और मुझे थाम लेना। परंतु वहाँ पहाड़ पर सिंह है, कोई चिंता नहीं, जब तक आसपास है जरा भी अंतर नहीं पड़ता, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। वहाँ एक परेशानी है, ये चिकनी चट्टाने हैं, मैं चिंता नहीं करता, जब तक आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मैं आपके साथ साथ चलूंगा, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। ओ क्या आप जानते हैं तुम्हारे पिता ये किया करते थे, देखा, ये अच्छा है। जी हाँ श्रीमान, वहाँ उस पहाड़ पर पहुँच जाओ। ओ उसने कहा, आप जानते हैं क्या पिता, आपका पुत्र तो एक पुराने खंड का टुकड़ा है, वो बिल्कुल ही आपके समान है, हर वचन जो आप कहते हैं वो उस पर आमीन कहता है। उस दिन मैंने उससे बाइबल खुलवाई और उसमें कहा गया कि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। आप जानते हैं उसने क्या कहा, वो चिल्लाया और उसने अपने हाथ हवा में उठा लिए और कहा, हालेलुया, आमीन। ओ और आप जानते हैं इसने यहाँ कहा, आपके वचन में आप जानते हैं जहाँ आपने कहा कि वे कार्य, वो जो मुझ पर विश्वास करता है जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा। हाँ मुझे याद है, ये लेख मेरे पुत्र के लिए है, हाँ मुझे लेख याद है। ओ जब उसने ये देखा वो चिल्लाया और ऊपर नीचे कूदा, शोर मचाया, हालेलुया, प्रभु मुझसे सारा संसार ले लें, मुझे इस प्रकार का बना दें। जी हाँ श्रीमान, और वे सारी बातें जो उसने की हैं। ओ पिता ने ये कहा, मैं इस पुत्र के लिए आनंदित हूँ, पुत्र ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ वर्षों के लिए उस पर दृष्टि रखें, देखिए वो कैसे आता है और कैसे उन्नति करता है, और कुछ ही समय में वर्षों बीत गए, वो कैसा चल रहा है, ओ वो अनुग्रह में बढ़ रहा है, ओ प्रभु वो बस जंगल में गोलाबारी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ वो वास्तव में क्यों, वो उन भेड़ों को लेता है जैसे आप करते हैं वैसे ही उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो उन्हें कछार की घास कभी नहीं देगा, वो उन्हें लोह घास कभी नहीं देगा। जब वो आसपास आएगा वो कह रहा है हम कलीसिया में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो कहता है आप अपना मुंह बंद रखो, आपको इसकी आवश्यकता नहीं। नहीं श्रीमान, ये है जिसको आपकी आवश्यकता है, प्रायश्चित करो और तुम में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जी हाँ श्रीमान, यही जो उसने कहा। ओ क्या वास्तव में उसने ये कहा? जी हाँ श्रीमान, उसने वास्तव में कहा। अच्छा मैंने इसे इसी प्रकार लिखा है, इसी प्रकार से वो ये कहता है। हाँ जी हाँ श्रीमान, उनमें से कुछ ने कहा जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ तुम यरूशलेम नगर में रुके रहना, जब से पवित्र आत्मा तुम पर उतरा है तुम यरूशलेम यहूदिया और सामरिया और संसार के दूसरे छोर तक मेरे गवाह हो। जब उसने ये पढ़ा चिल्लाया हालेलुया, यही जिसकी आपको आवश्यकता है। आप जानते हैं वो क्या करता है, वो उन्हें वहाँ ले जाता है, उन्हें बताता है कि इसे ले लो, बस उनके साथ टिके रहो। यदि वे विवाद आरम्भ करते हैं वो कहता है बस 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 एक मिनट रुको, बकरियाँ इस प्रकार व्यवहार करती हैं ना कि भेड़े, समझे। ओ कभी कभी वो थोड़ा सा चिढ़कर कहते हैं एक मिनट रुको, ये ठीक है। अब वो वास्तव में जानता है कि उन भेड़ों को कैसे नियंत्रित किया जाए। जी हाँ श्रीमान, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं क्या, मैंने फला फला आर्च बिशप को देखा, उसे बताओ कि वो इस नगर में आकर और सभा आयोजित नहीं कर सकेंगे, परंतु आप जानते हैं एक प्रकार से मैंने उसकी अगुवाई की है, मैंने कहा जो भी है जाओ, समझे, इन टेपों को वापस ले लो और इन्हें बाहर मत जाने दो, जैसा भी है। हम गए इन नगरों में, गए कहा अच्छा हम नहीं, और आप जानते हैं कि शैतान वहाँ आ गया, कहा तुम उससे शर्त लगा लो मैं उसे नगर से बाहर रख सकता हूँ, मैंने कहा ये नहीं कर सकता, यदि मैं उसे जाने के लिए कहूँ तो वो जाएगा, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि वो जाएगा। नहीं, मैं उससे कहूँगा, मैं वहाँ जाकर कहूँगा अब मेरे सारे प्रतिनिधियों तुम सब एकत्र हो जाओ, तुम उनमें से किसी पुराने धर्मांधता को यहाँ नहीं चाहते, वो पुरानी दिव्य चंगाई और पुराने पवित्र आत्मा वाला मामला जो कि प्रेतों के 7 वर्षों पहले बीत गया, तुम जानते हो कि पहले भी ठीक नहीं था, उन्हें पुरानी सूखी घास देने का यत्न कर रहे हैं और इस प्रकार की चीजें वे, परंतु आप जानते हैं क्या, कैसे भी वहाँ पहुँचा, सीधा वहाँ गया और ग्लूसन घास फेंकनी आरंभ कर दी वहाँ से, और अब जानते हैं क्या, उन भेड़ों ने खाना आरंभ कर दिया और वो जितनी मोटी हो सकती थी हो गई। जी हाँ श्रीमान, जबकि वे चंगाई और सभाएं कर रहे थे और आप जानते हैं कि उनमें से बहुत से लोगों ने आरंभ कर दिया, क्यों, उन्होंने देखा यदि उन्हें सूखी घास का ढेर मिल जाए, जैसे वो लहसुन आप जानते हैं उन्होंने उससे क्या किया, वो इतना अच्छा था जब तक कि वे पड़ोसी के पास भाग कर नहीं गए, कहा इसे लो किशोरो तैयार हो जाओ। जी हाँ श्रीमान, यहाँ ठीक इसी प्रकार से, ये ठीक यहाँ पर है, यहाँ पर ये है, देखिए, बस आप सब प्रायश्चित करें और यीशु के नाम में बपतिस्मा लें, देखिए पवित्र आत्मा पालो, जो भी चाहे वो आए, वो यहाँ आकर देखे कि बाइबल ने क्या कहा है। देखिए, और उनका वहाँ एक महान समय है। ओह, ये तो मेरा पुत्र है, ये मेरा लड़का है। अच्छा, आप सोचते हैं कि ये पूर्णतः परिपक्व है? हाँ, निश्चय ही, पवित्र आत्मा ने कहा। मैं परीक्षाएं ले चुका हूँ लड़के, मैंने इसे इधर से उधर से परखा, मैंने उसे रोगी कर दिया, मैंने उसे दबाया, मैंने उसे गिराया, मैंने शैतान को सब कुछ करने दिया जो वो कर सकता था। वो फिर से वापस आया, वो वैसे ही आया, देखिए फिर से आया। मैंने उसे रोगी कर दिया, मैंने ये किया, मैंने उसे अस्पताल में डाल दिया, मैं उसे बाहर ले आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसकी पत्नी को उसके विरोध में कर दिया, मैंने उसके पड़ोसी को उसके विरोध में कर दिया, मैंने हर चीज घुमा दी। इससे जरा भी अंतर नहीं पड़ा। कहा, चाहे वो मुझे मार डाले तो भी मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैंने उसके परिवार को मार डाला, मैंने ये ले लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर भी वो सीधा खड़ा है। यद्यपि वो मुझे मार डाले तो भी मैं उसकी सेवा करूंगा, वो मेरा है। ओ अच्छा, मैं विश्वास करता हूँ। हमें उसे कहीं बुलाना चाहिए, एक विशेष स्थान पर, और लेपालक कर लो। पुराने नियम में जब पिता समझ गया कि उसका पुत्र उस आयु पर आ गया है और लेपालक पद के लिए तैयार हो गया है के लिए, वे जन्मे हुए बालक हैं, परंतु जब वो उस समय भी पुत्र था, परंतु तब वो बालक नहीं रहेंगे, केवल एक साधारण पुत्र, जब तक वे परिपक्व ना हो जाएं और दिखाएं कि वे क्या हैं, तब वो उसे बाहर बुलाएगा। तब अब यहाँ हम हैं कलीसिया, क्या आप तैयार हैं? अब ये थोड़ी देर हो गई है, हर एक अपनी उंगली काटे, अपने प्राण को कचोटे और अपने हृदय को नोचे, केवल एक मिनट के लिए, समझे। अब हम कलीसिया को यथा स्थान पर रखने जा रहे हैं। अब जब कलीसिया उस स्थान पर पहुँच जाती है, वो कहता है, मनुष्य तू यहाँ से है, ए प्रेम तू यहाँ है। तब वो उसे एक निश्चित स्थान पर ले जाता है, पिता करता है, और उसे ऊंचे स्थान पर बैठाता है इस प्रकार से, और वो उत्सव करता है, और वे आसपास आते हैं, और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर एक ये जान जाए कि ये मेरा बालक है, और मैं इसे लेपालक पद देता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी जाने कि अब से ये उसका नाम, मैं उसे वस्त्र पहनाता हूँ, एक विशेष वस्त्र, और मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि उसका नाम किसी भी चेक पर वैसे ही है जैसे मेरा नाम है। ये मेरा पुत्र है, मैं इसे अपने परिवार में लेपालक करता हूँ। यद्यपि वो जन्म से मेरा पुत्र था, जब से उसने पवित्र आत्मा पाया वो मेरा पुत्र है, परंतु अब मैं उसे यथा स्थान पर अधिकार सहित रखने जा रहा हूँ। जो वो जलाए वो जल गया, जो वो किराए पर ले लिया गया। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तू उस पेड़ से कहे, यदि तू उस पहाड़ से कहे, हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करे, परंतु विश्वास करे कि जो तूने कहा, समझे, आप वहीं पर हैं, आप उसी स्थिति में हैं, समझे, ये मेरा पुत्र है। कितने ये जानते हैं कि लेपालक पद, कि उन्होंने पुत्र को लेपालक कर लिया उसके सिद्ध करने के पश्चात। कोई भी जिसने कभी बाइबल पढ़ी, पुत्र का यथा स्थान पर रखना। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ ऐसे ही किया जब वो यीशु को रूपांतरण वाले पर्वत पर ले गया। उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना को ऊपर बुलाया, पृथ्वी के तीन गवाह, वहाँ यीशु, मूसा और एलिया और परमेश्वर पर्वत पर थे। वहाँ वे पर्वत पर खड़े हुए, और पहली बात आप जानते हैं, उन्होंने देखा और यीशु उनके सामने महिमामय हो गया। क्या ये ठीक बात है? कितने जानते हैं कि ये पवित्र वचन है? उसने क्या किया? उसने उसे अमरणहार वस्त्र पहनाया, और उसने कहा, उसका वस्त्र सूर्य के समान चमका। क्या ये ठीक बात है? और एक बादल ने उन्हें ढांप लिया, और पतरस, यूहन्ना और वे मुंह के बल गिर पड़े, और उन्होंने देखा, और वहाँ मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे, और मूसा मर चुका था और चिन्हित ना होने वाली कब्र में 800 वर्ष पहले गाड़ा गया था, और एलिया इससे पहले 500 वर्ष पहले रथ पर चढ़कर स्वर्ग चला गया था। ओ, परंतु वे अब भी वहाँ पर थे, वहाँ वे उससे बातें कर रहे थे। देखिए, वो यीशु को उनसे मिलाने वहाँ ले गया कि देखें कि ये सब किस विषय में था। वहाँ देखें, उसे वे चीजें दिखाई और उन्होंने उससे बातें की, उसके साथ बातचीत की। तब जैसे ही पतरस ने पीछे मुड़कर देखा और महिमा यीशु पर से हट गई थी, उन्होंने केवल यीशु को देखा, और बादल में से एक शब्द आया और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब इसका नाम उतना ही अच्छा है जितना मेरा, तुम इसकी सुनो। यही है, लय पालक हुआ या पुत्रों को उचित स्थान पर रखा। अब यही जहां परमेश्वर पेंतिकॉस्तल कलीसिया को इफिसियों की पुस्तक में लाने का यत्न कर रहा है, समझे? क्या आप समझे? हम बहुत समीप हो गए हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है। देखिए, बालक सोने लगे हैं और मैं इस पद पर ठीक यहां आना चाह रहा हूं, परंतु मैं ये नहीं कर सकता। 13वें पद तक देखिए, अंतिम भाग, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा द्वारा मोहर बंद। हम इसे रविवार को लेंगे। देखिए, अब क्या हमें भीतर क्या लाया और हम कैसे इसके द्वारा रखे गए, परंतु अब स्थान पर रखना। आप कैसे हैं? आप पहले पवित्र आत्मा के द्वारा राज्य में जन्म लेते हैं। कितने ये जानते हैं? ठीक है, अगला, आप किस लिए ठहराए गए हैं? लेपालक पद के लिए। ये क्या है? आप उचित स्थान के लिए ठहराए गए हैं। ओ बहन स्कॉट, मैं विश्वास करता हूँ ये यहाँ पर सही बैठ गया। क्या आप वही हैं जो घर पर था आज? एक शिक्षा समस्त जगत में चल रही है, राष्ट्र के विभिन्न भागों में। मैंने इसके विषय में बहुत सुना है कि यीशु यहाँ पृथ्वी पर है, शरीर में चल फिर रहा है, वो अंदर आता है और ये करता है। ये एक झूठ है। उसका पवित्र आत्मा यहाँ पर है और वो अपनी कलीसिया को यथा स्थान पर रखने का यत्न कर रहा है, ताकि अपनी कलीसिया को व्यवस्थित करे। उसे प्रतिज्ञा के देश में रख रहा है ताकि वे प्रवेश कर सकें, ताकि सारे शत्रुओं को भगाया जा सके। मनुष्य उसकी भूमि नहीं ले सकता। मैं चंगाई सभा आयोजित नहीं कर सकता जबकि आधे से अधिक, जबकि मैं बाहर जाता हूं और यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को प्रचार करता हूं, और त्रिएकता वाले भाई ये कह रहे हैं, ओ ये तो पुराना जीसस ओनली वाला है, और मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ और दिव्य चंगाई करूँ, जबकि उनमें से आधे कहते हैं और उनमें से बहुत से प्रभु के आश्चर्य कर्मों का आनंद लेते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं भाई ब्रणम का भविष्यता होने का विश्वास करता हूँ। परंतु मैं आपको कुछ बता दूँ, जब तक आत्मा उस पर है और वो विचारों को जांच रहा है तो वो प्रभु का दास है, परंतु उसकी शिक्षा बेकार है, वो अच्छी नहीं है। ऐसी अनाप शनाप को कौन सुनेगा? ये या तो परमेश्वर है या ये नहीं है। ये ठीक बात है, या तो ये सब परमेश्वर का है या कुछ भी परमेश्वर का नहीं। ये इसी प्रकार से है, परंतु आप कैसे लेने जा रहे हैं? मनुष्य उसकी भूमि नहीं रखेगा, एप्रेम उसकी भूमि नहीं रखेगा, गाद उसकी भूमि नहीं रखेगा, बिन्यामीन उसकी भूमि नहीं रखेगा। वे सब फिलिस्तीनियों के साथ भाग रहे हैं और सब मिलजुल गए हैं। हम कैसे स्थान लेने जा रहे हैं? परंतु हम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, हम सब, क्या ये ठीक है? हम किसके लिए जन्मे हैं? ठहराए जा चुके हैं, तब जन्म लेने के पश्चात हम लेपालक पद के लिए ठहराए गए हैं कि मसीह की देह में स्थापित किए जाएं। आपने देखा मेरा क्या अर्थ है? मसीह की देह क्या है? कुछ प्रेरित हैं, कुछ भविष्यद्वक्ता हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ सुसमाचार फैलाने वाले और कुछ पास्टर हैं। क्या ये ठीक है? हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। दूसरों के पास अन्य भाषाओं का वरदान है, भाषाओं का अनुवाद, बुद्धि, ज्ञान, आश्चर्यकर्मों का होना, ये सारे विभिन्न वरदान। और अब वे क्या करेंगे? उन्होंने इसका थोड़ा सा अभ्यास किया है। क्या इसे ऐसे ही ढीला चलने दो? मैं नहीं जानता। क्या एक उठकर खड़ा हुआ भाषाओं में बोला और दूसरा बातें करते हुए आगे बढ़ा? वही बात प्रचारक प्रचार करेगा, ऑल्टर पर बुलाएगा, और कोई खड़ा हुआ अन्य भाषा में बोला और हेलुलिया, परमेश्वर की महिमा हो। यदि प्रचारक संदेश के साथ जाता है अभिषिक्त किया हुआ, तब लोग कहते हैं पुराना पिछड़ा हुआ। देखिए, ये क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया। बाइबल ने कहा भविष्यद्वक्ता का आत्मा भविष्यद्वक्ता के वश में है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ या एक सेवक यहाँ परमेश्वर के अभिषेक में, कोई मतलब नहीं आप कितनी भी अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, आप शांति बनाए रखेंगे जब तक कि यहाँ परमेश्वर का समाप्त ना हो जाए। तब यदि आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो ये केवल कुछ वचनों को दोहराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेकार का दोहराना नहीं, परंतु ये एक संदेश किसी को सीधा। मुझसे एक बार पूछो, अपनी उंगली एक बार रखो, विचारों को परखते हुए किसी को बार बार वचन दोहराने के लिए बताओ। मैंने उन्हें कुछ बताया जो उनके साथ गलत था और कुछ जो उन्होंने किया और कुछ जो उन्हें करना चाहिए या कुछ होना था या कुछ ऐसा ही। क्या ये ठीक है? ऐसे ही भाषाओं में बोलना और अनुवाद करना। यदि कोई कलीसिया में हो जो अन्य भाषाओं में बात करता हो और दूसरा अनुवाद करता हो, उसे ये कहने दें, भाई नेविल को खड़े होकर अन्य भाषा में बोलने दें और ये भाई यहाँ अनुवाद करता है। मान लीजिए यहाँ इस व्यक्ति को बताओ कि बीते कल वो वहाँ गया और कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। अब डॉक्टर ने उसे आज बताया है कि उसे कैंसर है। जाकर उस बात को ठीक करो, यहाँ वापस आओ और परमेश्वर के साथ संबंध ठीक कर लो। व्यक्ति कहता है सच में ये सत्य है, तब परमेश्वर आपके साथ है। परंतु हम इसे इस प्रकार कैसे कर सकते हैं, समझे? ये केवल गुरुर गुरुर किसी प्रकार का कोई उचित स्थान नहीं है। अब ये देखिए, इफिसियन यत्न कर रहे हैं, देखिए वे चूक गए। देखिए वे कैसे चूक गए। हम लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराए गए हैं। आप कितने समझते हैं कि मेरा क्या अर्थ है? अपने हाथ उठाएं। लेपालकता, निश्चय ही हम परमेश्वर के आत्मा में जन्मे हैं। पवित्र आत्मा पाओ और रो, अब्बा पिता, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग, ये ठीक बात है, हम बालक हैं, परंतु हम कहीं नहीं पा सकते। हम फिलिस्तीनियों को नहीं मार सकते। देखिए बिली ग्राम वहाँ खड़े हुए हैं और वो मुसलमान कह रहा है इसे सिद्ध करो। जैक को देखिए, वो वहाँ खड़ा हुआ है और वो अनिश्वरवादी, वो चर्च ऑफ क्राइस्ट, वो वहाँ अनिश्वरवादी से हाथ मिला रहे हैं और हाथ पकड़ रहे हैं। मसीही होना चाहिए और जॉय लूज जैसे शैतान से हाथ मिला रहा है और एक स्वतंत्र विचारों वाला परमेश्वर को भी कोसता है और कहा आरंभ से परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है और इस तरह की बातें, और एक कलीसिया को जो स्वयं को चर्च ऑफ क्राइस्ट कहते हैं उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और भाई जैक को के विरुद्ध हैं। हम कैसे कुछ करने जा रहे हैं? और पेंटिकॉस्टल उनमें से बहुत से उसके विरुद्ध हैं, जबकि हमारे देश के बहुत से प्रचारकों को उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और कहा परमेश्वर अपनी सामर्थ को नीचे भेजे। देखिए हम यहीं पर हैं जहां ये रखा नहीं जा सकता। एप्रेम रुकना नहीं चाहता। उनमें से एक वहां चला गया। हम मनुष्य को यहां पाते हैं, कहता है ओ प्रभु मुझे एक अच्छा गेहूं का खेत दे। तब यहां गाद आता है। गाद ने कहा अच्छा अब एक मिनट रुको, मुझे जय उगानी चाहिए परंतु मैं अनाज भी लेने वाला हूँ। हालेलुया, आप समझे? आपको अनाज से कुछ लेना देना नहीं, अपने भाग में जय उगाओ। आपको भेड़े नहीं चरानी चाहिए जबकि आपको जानवरों का रेवड़ चराना चाहिए। परमेश्वर कलीसिया को उचित स्थान पर रखना चाहता है, परंतु उनमें से प्रत्येक वही कार्य करना चाहता है। हालेलुया। और आप इस विषय में एक बात नहीं बता सकते? नहीं नहीं, उनमें अब भी बकरी का स्वभाव है। बट 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 देखिए, आप उन्हें नहीं बता सकते कि ये ठीक है। अब क्या ये सत्य नहीं है? और आप कलीसिया को सही स्थान पर नहीं रख सकते, समझे? कलीसिया को पहले से ठहराया हुआ होना चाहिए बालकों के ले बालक पद के लिए, जहाँ एक व्यक्ति, परमेश्वर एक व्यक्ति को ले सकता है और उसे परिवार में ले पालक कर लेता है और उसे कुछ दे देता है। पहले इसे परख और देख लें यदि ये ठीक है। बाइबल ने कहा आत्मा को परखो। ये मनुष्य निश्चित बात का दावा करता है, इसे परखें और देखें यदि ये ठीक है तो। यदि ये ठीक है तो इसके साथ बने रहें। तब कहें प्रभु हमारे पास कुछ और भेज, बढ़ते जाएं। देखिए बस बढ़ते जाएं जब तक हर व्यक्ति अपने स्थान को ना ले ले। तब आप परमेश्वर की कलीसिया को देखने जा रहे हैं, अपने स्थान को लेना आरंभ कर दिया। तब जब फिलिस्तीन इसके समर्थन में आएंगे, छोटे कपड़े हट जाएंगे, बाल नीचे की ओर बढ़ेंगे, मुंह धुले हुए होंगे, सिंगार गायब होगा। ये ठीक बात है। जब कलीसिया अपनी जबरदस्त सामर्थ में आना आरंभ हो जाएगी, जब हमारे पास हनानिया और सफीरा हैं और उनमें से कुछ, जी हाँ श्रीमान, आप देखेंगे जब वो पवित्र कलीसिया एक साथ अपनी सामर्थ में खड़ी होती है, परमेश्वर के पुत्रों के समान अपने अपने उचित स्थान पर परमेश्वर के परिवार में लेपालक हो गए हैं, सामर्थिक कलीसिया वहाँ अपनी महिमा में खड़ी है। ओ इसी के लिए वो आ रहा है। देखिए भाइयों, हम कितने भटके हुए हैं। आप पवित्र वचन पर भी एक साथ एकत्र नहीं होते। और कोई भी व्यक्ति जो बाइबल में पानी का बपतिस्मा नहीं देख सकता यीशु मसीह के नाम में, या तो वो अंधा है या उसके मस्तिष्क में गड़बड़ी है। ये ठीक बात है और इस पर बड़ा झगड़ा है। मैं किसी भी व्यक्ति से कहूंगा जो मेरे पास कोई भी कभी वचन लाए, जहाँ किसी का भी नई कलीसिया में यीशु मसीह के नाम के अलावा बपतिस्मा दिया गया हो, या यदि उसे किसी और प्रकार से बपतिस्मा दिया गया हो, उसका फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ ताकि पवित्र आत्मा पाए, आप आकर मुझे दिखाएं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है। जब यीशु ने वहां कहा इसलिए तुम जाकर सारे जगत में सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र ना ही पवित्र आत्मा, इनमें से कोई भी नाम नहीं है, इनमें से कोई भी। पतरस घूमा, ठीक 10 दिन के पश्चात कहा प्रायश्चित करो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और बाइबल में सब जगह, और तब यहाँ कुछ थे जिनका किसी और प्रकार से बपतिस्मा हुआ यूहन्ना के द्वारा केवल पश्चाताप के लिए। पौलुस ने कहा तुम्हारा फिर से बपतिस्मा होना है, तुम्हें फिर से आना है। ओ परंतु हमारा एक महान पवित्र मनुष्य के द्वारा बपतिस्मा हुआ है यूहन्ना, उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। ठीक है, ये सुसमाचार है, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये मुझ पर प्रकाशित हुआ है, मैं प्रभु का प्रेरित हूँ। और यदि स्वर्ग से दूत आकर कुछ और प्रचार करे, मैं ये पढ़ दूँ, बाइबल ने कहा यदि कोई दूत, पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग का कोई दूत कुछ और कहे, बिशप, आर्च बिशप, पोप, ओवरसियर, वो चाहे जो भी हो, यदि वो इसे छोड़ कुछ और प्रचार करता है जो मैंने तुम्हें प्रचार किया, तो वो श्रापित हो। वहाँ नहीं, हमारी ऐसी कोई रीति नहीं, नहीं श्रीमान, आप केवल ऐसी कोई बात नहीं, आप हम। और तब देखिए क्यों नहीं लोग इसे देख सकते हैं, क्यों ये लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे, समझे? किसी ने ठीक प्रहार किया है, जीन पहले से ठहराया गया, बिल्कुल ठीक। क्यों? सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। कितना सही है, सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा। मेरे साथ क्या मामला है, मैं यहाँ ढूंढने का यत्न कर रहा हूँ, हम यहाँ पर ठीक हैं। मैं जरा इस पद को पढ़ दूँ और तब मैं आपको बताऊंगा कि पौलुस ने क्या, वे बातें जो, वही संदेश जो मैंने आज रात्रि प्रचार किया, यही जो पौलुस ने पहले से ठहराए जाने पर कहा, यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कलीसिया में व्यवस्थित करना और आदि आदि। यहाँ जो उसने कहा, मुझे आश्चर्य है, गलतियों को बता रहा है, तुम उससे इतनी जल्दी फिर गए जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हारे कारण लज्जित हूँ कि तुम किसी को भीतर आने देते हो जो तुम्हें उससे हटा देता है दूसरे सुसमाचार की ओर, जो कि दूसरा है ही नहीं, परंतु कुछ तुम्हें मसीह के सुसमाचार से अलग करना चाहते हैं, मसीह के वास्तविक सुसमाचार को रोकते हैं। परंतु ध्यान दें, अब याद रखें, ये पौलुस था जिसने हर व्यक्ति को बाध्य किया कि जिसका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ आकर दोबारा बपतिस्मा ले। कितने जानते हैं कि ये सत्य है, कितने जानते हैं कि ये पौलुस था जिसने कहा ये भेद पृथ्वी के रचने से पहले छिपे हुए थे और उस पर प्रकट हुआ कि हम उसके पुत्र होने के लिए ठहराए गए और लेपाल होने के लिए। ये पौलुस था, देखिए यहाँ उसने क्या कहा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। ऐसा नहीं कहता सेवको मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ, वो श्रापित ठहरा। मैं अगला पद पढ़ दूँ, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। ये ठीक बात है। अब भाई बहनों, यदि ये उस दिन परमेश्वर था, और मैं कहता हूँ कि आशा कर रहा हूँ, श्रद्धाहीन नहीं, इसने मुझे इस छोटे से को देखने के लिए लिया, अब मैं उत्तेजित हो गया, मैं अनुमान नहीं लगाता, मैं उत्तेजित हो गया, मैं प्रचार करते हुए आशीषित होता हूँ। मैं अपने आपे में नहीं हूं और आपको तब तक रोके रहूं, मैं जानता हूं कि आपको नींद आ रही है और थके हुए हैं, परंतु ओ मैं, यदि आप केवल ये जान सकते होते कि मैं आपको वहां कितना चाहता हूं, समझे? और जब मैं एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं, जब मैंने कहा ये करेगा, उसने कहा क्या आप देखना चाहते हैं कि अंत क्या है, और मैंने पीछे मुड़कर देखा और स्वयं को वहाँ पलंग पर पड़े हुए देखा। निश्चय ही आप लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं कि मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि शाऊल के अभिषेक से पहले सैमुएल ने कहा क्या मैंने तुम्हें प्रभु के नाम में कुछ भी बताया जो कि सत्य था, क्या ये ठीक है, ये सदा सत्य रहा है, क्या मैं तुम्हारे पास कभी पैसे मांगने आया था या इस प्रकार की कोई बात, नहीं, देखिए मैंने कभी नहीं, क्या मैंने कभी कुछ किया परंतु अपना पूरा यत्न किया कि आपकी अगुवाई मसीह तक करूं, बिल्कुल ठीक। अब वह कहना चाहते हैं मैं मस्तिष्क को पढ़ने वाला हूं, आप जानते हैं एक सर्वोत्तम चेतना का अनुबोध करता, ठीक है, उन बातों को उठना ही है। बाइबल ने कहा वे करेंगे, जैसे यम्ब्रेस और यन्नेस ने मूसा के विरोध में खड़े हुए, उन्होंने भी लगभग वही किया जो मूसा ने किया जब तक शक्ति परीक्षण पर ना आए। ये ठीक बात है, परंतु स्मरण रखें, यम्ब्रेस और यन्नेस चंगा नहीं कर सके, वे चंगा नहीं कर सके। वे विपत्तियों को ला सकते थे परंतु उन्हें हटा नहीं सकते थे, समझे? ठीक है, अब परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर का वचन सत्य रहता है। मैंने आपके साथ ईमानदारी से रहने का यत्न किया है, मैंने सत्य बताने का यत्न किया है, मैंने किया है लगभग 31 वर्षों से। मैं इस प्रचार मंच पर खड़ा हूँ अलग और इस पर 31 वर्षों से, और किसी दिन इस प्रचार मंच को छोड़कर एक और महिमा में जा सकता हूँ। वहाँ पत्नी, एक पुत्री, पिता, भाई लोग जो गाड़े गए, वहाँ उस पर बहुमूल्य मित्रगण, मैंने उनके बॉक्सों को देखा और फूल उस पर रखे हुए, और जानता हूँ किसी दिन मेरा भी होगा। अब ये सत्य है, परंतु ईमानदारी से मैं अपने पूरे हृदय से आपको, हृदय की गहराई से बताता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार सुनाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से प्रत्येक को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। और जब भी आप करते हैं तो ये आपको आनंद देगा, सहनशीलता, भलाई, नम्रता, सज्जनता, धैर्य, विश्वास। और उस दिन मुझे उस प्रातः क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं अब भी नहीं कह सकता कि मैं यहाँ अपने शरीर में था या दर्शन देखा या मैं यहाँ से वहाँ उठा लिया गया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। केवल इतना जानता हूँ मैं सदा मरने से डरता था, डंक का वो छोटा सा स्थान, परंतु इसलिए नहीं कि यीशु मुझे लेने नहीं आएगा, मैं इससे नहीं डरता था क्योंकि मैं इस बात से नहीं डरा। परंतु यदि मैं आपसे मिलूंगा तो एक छोटे से धुंध के समान उड़ता फिरूंगा, परंतु अब मैं देखता हूँ, जब मैंने उन लोगों को देखा वे वास्तविक थे।
She called me her darling brother. There was no sex, no feelings of that type. It couldn't be. It was perfect. It was sweetness. It was perfection. I'm wondering, I don't know, I'm wondering, is that what she seen before she left the earth when she was young in the hospital, when I called her? And she said, Billy, you have preached it, you've talked about it, but she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to stay.
Amen.
I wonder if that's what it is, that godly, saintly old man of F.F. Bosworth, who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world. Old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him.
Yes.
Godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him, and there he laid back there, way nearly 90 years old. His little old arms reached out. His little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
कभी कोई व्यक्ति हुआ जिसने पेंटिकोस्ट का प्रतिनिधित्व किया, वो एफएफ बॉसवर्थ थे। साफ सीधे वास्तविक सुसमाचार, देखिए वो बॉसवर्थ थे। और जब मैंने उन्हें अपनी बाहों में पकड़ा और मैं रोया, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवार, उसने कहा, पुत्र, कार्य क्षेत्र में जमे रहो। कहा, इन नवयुवकों को विदेश कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करो, यदि तुम कर सकते हो, इससे पहले वे वहाँ बहुत सी धर्मांधता में फंस जाएं। उन्हें वो वास्तविक सुसमाचार दो जो तुम्हारे पास है, पुत्र। उसने कहा, तुम्हारी सेवकाई अभी आरम्भ ही नहीं हुई है जहाँ पर यह होगी। कहा, तुम नए ब्रह्म हो। कहा, तुम युवा हो, पुत्र। मैंने कहा, भाई बॉसवर्थ, मैं 48 वर्ष का हूँ। उसने कहा, तुम अभी आरंभ नहीं हुए हो। उसने कहा, इन युवा पेंटिकोस्टल प्रचारकों को बहुत सारी अनाप शनाप बातें के साथ वहाँ ना जाने दो और बातों को खराब करें, और सारे राजनीतिज्ञों और सारे राष्ट्रों को तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले विरुद्ध ना कर दें। कहा, भाई ब्रैनम, आगे बढ़ो, सुसमाचार के साथ आगे बढ़ो जो तुम्हारे पास है। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम एक प्रेरित हो या प्रभु हमारे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता। मैंने उनकी ओर देखा, मैंने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कहा, भाई बॉसवर्थ, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपके सारे क्षणों, आपके सारे वर्षों में जो आपने प्रचार किया, सबसे अधिक आनंददायक क्या था? उन्होंने कहा, ठीक अभी, भाई ब्रैनम। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं आप मर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं मर सकता। मैंने कहा क्या आप क्यों कहते हैं कि ये आपका सबसे आनंदमय समय है, वहाँ एक छोटा द्वार है। उन्होंने कहा मैं यहाँ अपना मुख द्वार की तरफ किए लेटा हूँ। किसी भी समय वे जिनसे मैंने प्रेम किया और वे जिन्हें मैंने प्रचार किया और जिनके लिए खड़ा हुआ वे सब मेरा जीवन वो मेरे लिए उस द्वार पर आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। मैंने उनकी ओर देखा, मैंने सोचा मैं उन्हें वैसे ही देख रहा था जैसे कि अब्राहम इसहाक या याकूब को देख रहा हूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई बोसफोर्थ हम दोनों एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम एक ही चीज का विश्वास करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अब तक प्रचार करूंगा जब तक मेरी अंतिम सांस मेरे शरीर को नहीं छोड़ती। मैं परमेश्वर के प्रति सत्य रहूंगा जितना जानता हूं कि कैसे रहूंगा। मैं सुसमाचार से समझौता नहीं करूंगा किसी भी ओर या किसी स्थान में। मैं सत्य रहूंगा जितना रह सकता हूं। भाई बोसफोर्थ मैं आपसे अच्छे देश में मिलूंगा जहां आप युवा नहीं होंगे या फिर बूढ़े नहीं होंगे परंतु युवा रहेंगे। उसने कहा तुम वहां हो गए भाई बणम, आप चिंता ना करें। और एक घंटे पहले दो घंटे पहले वो मर गए। लगभग दो माह बाद मैंने सोचा वो तब मर रहा था। मेरी पत्नी भीतर आई और उन्हें देखा, उन्होंने उनके विषय में बहुत सोचा और तब श्रीमती बोसफोर्थ और लगभग दो घंटे वो लेटे हुए सो रहे थे। वो उठे, उन्होंने देखा और वो अपने पलंग से उछले। उसने कहा माँ अच्छा मैंने आपको वर्षों से नहीं देखा। पिताजी भाई जिम क्यों कहा हम देखें, मैंने आपका मत परिवर्तन प्रभु के लिए किया था जोलियट इलिनॉइस में, वो 50 वर्षों पहले मर चुके थे समझे। जी हाँ, उसने कहा बहन फला फला हाँ मैं आपको विनीपेग में सभाओं में प्रभु के पास ले गया था। हाँ क्यों, यहाँ बहन अमुक अमुक है, मैंने आपको नहीं देखा। हाँ आप प्रभु के पास फला फला में आई थी और दो घंटों लगातार वो उनसे जिनकी अगुवाई प्रभु तक की थी हाथ मिलाते रहे, वापस सीधे अपने स्थान पर गए और लेट गए, हाथों को एक दूसरे पर किया और यही था। क्या भाई एफ एफ बोसफोर्थ उस देश में चले गए जो यीशु ने मुझे उस रात्रि दिखाया? यदि यह है तो आज रात्रि वो वहाँ एक नव युवक है। परमेश्वर उनके प्राण को विश्राम दे और होने पाए कि मैं इतनी ईमानदारी से जीवन जीऊं कि उस देश में प्रवेश करूं और इतना सच्चा रहूं मसीह का एक दास। मुझे अपने जीवन पर लज्जा आती है, मैं लज्जित हूं। मैं यदि मैंने आप लोगों के सम्मुख पाप किया हो तो आप मेरे पास आकर मुझे बताएं, समझे। मैंने हर बात में सच्चा जीवन जीने के लिए यत्न किया है जो परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से करने को दिया, समझे। परंतु मित्रों देखिए, आपका कर्तव्य बनता है यदि आप कुछ जानते हैं कि मेरे जीवन में ये गलत है आकर मुझे बताएं। और देखिए और यहाँ खड़े होकर आपके प्रति मेरा कर्तव्य है और आपको सच्चा सुसमाचार प्रचार करूं। आपके प्रति मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं आप में से प्रत्येक के मुख को देखने की आशा करता हूँ, युवा पुरुष और महिलाएं सामने उस रेखा के पार। यहाँ और वहाँ के बीच केवल एक सांस है जहाँ आप हैं। अब ये ठीक बात है, ये वहाँ है और होने पाए सारी अनुग्रह का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, धर्म विरोधी नहीं परंतु श्रद्धा में पापा, उस महान दिन जब हम वापस यहाँ उपस्थित किए जाएंगे और फिर से अपनी पृथ्वी की देह को लेंगे ताकि हम पी सकें और अंगूर खा सकें और देश के फल। वे घर बनाएंगे और कोई दूसरा नहीं लेगा, वे बारी लगाएंगे और दूसरा उसमें से नहीं खाएगा, समझे। एक पुरुष बारी लगाता है, उसका पुत्र उसे लेता है, फिर उसका पुत्र लेता है और फिर उसका, परंतु यहाँ नहीं, वो लगाएगा और वहाँ रहेगा। देखिए ये ठीक बात है, हम सदा के लिए वहाँ होंगे और होने पाए उस देश में मैं आप में से प्रत्येक को देखूं। और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर त्रिएकता वाले सेवकों से भी बात कर रहा हूँ। और मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको आघात पहुंचाने के लिए नहीं कहता, मैं भी एक त्रिएकवादी हूँ, मैं त्रिएकता में विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के तीन गुण पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परंतु तीन परमेश्वर नहीं, समझे। मैं बिल्कुल तीन गुणों में विश्वास करता हूँ, मैं अपने पूर्ण हृदय से पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परंतु वे तीन परमेश्वर नहीं है, वे केवल तीन गुण या परमेश्वर के तीन कार्य स्थल। एक समय परमेश्वर पितृत्व में, पुत्रत्व में और अब पवित्र आत्मा, ये वही परमेश्वर तीन कार्य स्थलों में। और वे और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम नहीं है, परमेश्वर का एक नाम है और उसका नाम यीशु है। बाइबल ने कहा स्वर्गीय परिवार का नाम यीशु है और पृथ्वी का पारिवारिक नाम यीशु है, ये ठीक बात है। इसलिए परमेश्वर का एक नाम मनुष्य नाम है, वो उसका नाम यहोवा येरे कहलाया, यहोवा राफा, वो उसके देवत्व का उपनाम है, परंतु उसका एक नाम है यीशु, और वो है। और सच में मेरे भाई, यदि आप मुझसे असहमत हैं, स्मरण रखें, जो भी है मैं आपसे वहाँ मिलूंगा, समझे, मैं आपके साथ वहाँ होऊंगा, और परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि कलीसिया याद रखे, रविवार प्रातः हम यहीं से आरंभ करेंगे, और मैं यत्न करने जा रहा हूँ कि आपको 2 बजे से अधिक न रोकूं, ताकि हम दोपहर बाद की सभा कर सकें, यदि संभव हुआ कि कर सकें। और यदि मैं करता हूँ जैसे कि मैंने आज रात्रि किया 10:30, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। प्रिय, मैं आपको प्रिय कह रहा हूँ क्योंकि आप हैं, आप लोग मेरे प्रिय हैं। आप जानते हैं क्या यहाँ वचन आता है, पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जलन रखता हूँ, उसकी कलीसिया, भक्ति की जलन, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात लगाई है। आप वही हैं, यही वो है, यही है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात लगाई है, मसीह के साथ वचनबद्ध किया है, एक सच्चे चरित्र की कुंवारी के समान। अब यदि ये उस दिन सच्चा था, उसने कहा, उन लोगों ने मुझसे कहा यीशु आपके पास आएगा और आप हमें उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, एक सच्चे चरित्र की कुंवारी, वचन के द्वारा परखी गई जो तुमने उन्हें प्रचार किया। और देखिए, यदि मैंने आपको वही प्रचार किया जो पौलुस ने अपनी कलीसिया को प्रचारा, यदि उसका झुंड जाता है तो हमारा भी, क्योंकि हमारे पास वही बात है। आमीन। आइए हम प्रार्थना के लिए सिरों को झुकाएं, जबकि हम कहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे।